और श्रीपाद सनातन गोस्वामी संबंध आचार्य है तो बलदेव जी के साथ क्या संबंध है इसका? क्योंकि जो गुरु होते हैं हमको संबंध ज्ञान प्रदान करते हैं। वैसे चार प्रकार के गुरु माने गए शास्त्रों में, एक है दीक्षा गुरु, दूसरा है शिक्षा गुरु और तीसरा है वर्तन प्रदर्शन गुरु और चौथा है चैत्य गुरु। ये चार गुरु होने पर भी मुख्यतः चर्चा हम दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु के बीच में करते हैं। हमारे जो दीक्षा गुरु होते हैं वो कोई और नहीं है, वो बलराम जी हैं। बलराम जी दीक्षा गुरु के रूप में हमारे सामने प्रकट होते हैं। जिस दिन हमको दीक्षा प्राप्त हुआ है या होगा तो उस दिन क्या होता है, हमारे जो गुरु हैं भगवान श्री कृष्ण के साथ संबंध जोड़ते हैं। और कौन से विग्रह के साथ संबंध जोड़ते हैं? श्री श्री राधा मदन मोहन जी के साथ संबंध जोड़ते हैं। तो इसलिए हमारे मूल गुरु वो कोई और नहीं है, बलराम जी है मूल दीक्षा गुरु। तो वो बलराम जी हमको श्री श्री राधा मदन मोहन जी के साथ संबंध जोड़ते हैं। इसलिए बलराम जी वो प्रकट होते हैं। बलराम जी का प्राकट्य इतना ही ये नहीं मानना चाहिए कि आज के दिन ही बलराम जी का प्राकट्य है। असत में हमारे जीवन में जब दीक्षा गुरु का प्राकट्य हुआ है वो भी बलराम जयंती है तत्व के रूप में देखा जाए। क्यों? क्योंकि बलराम जी कोई और नहीं है, वो हमारे गुरु हैं। जो बलराम जी हमको कहना चाहते हैं वो अपने गुरु के दीक्षा गुरु के मुख से कहते हैं। तो ये संबंध ज्ञान यदि देव विग्रह श्री श्री राधा मदन मोहन जी और साथ साथ में बलराम जयंती बड़ा विशेष है। भले ही बलराम जी का आविर्भाव कहीं भी मनाया जाए, हर जीव को जो कृष्ण उन्मुख होता है तो उस जीव को भगवान बलराम जी और राधा मदन मोहन जी के साथ संबंध जोड़ते हैं। तो खास करके राधा मदन मोहन जी के मंदिर में बलराम जी के बारे में चर्चा करना एक चर्चा करना जो है एक विशेषता है। तो बलराम जी क्या नाम ही बलराम है, जब उनका प्राकट्य होने वाला था या हो गया था उसके बाद गर्गाचार्य ने उनको कहा, उनके बहुत सारे नाम हैं, एक है उनका नाम बलराम। क्यों है उनका नाम बलराम? क्योंकि बल है, वो बहुत शक्तिशाली है। खाली केवल शक्तिशाली नहीं है, साथ साथ में उनके पास इतना आध्यात्मिक शक्ति है कि जिसके द्वारा सबको बल प्रदान करते हैं। मैं वही चीज़ को दे सकता हूँ जो मेरे पास है, तो मेरे पास क्या है? बल है, तो बल दे सकता हूँ। बलराम जी के पास पूर्ण आध्यात्मिक बल है, इस वजह से वो हम बद्ध जीवों को खास करके साधकों को आध्यात्मिक बल प्रदान करते हैं। हमने भी महसूस किया है या सब महसूस भी किए होंगे, तो आध्यात्मिक जीवन में थोड़ा सा ढीला डाला हो जाते हैं क्योंकि बहुत प्रकृति के प्रभाव की वजह से, अनेकों गुणों के प्रभाव की वजह से क्या होता है कि हमारा मन चंचल हो जाता है और भक्ति कार्यक्रम को उत्साह से नहीं कर पाते, तो क्षीण हो जाता है बल, वीकनेस आ जाता है। तो उस समय जब आध्यात्मिक गुरु का स्मरण किया जाता है या वो स्वयं उनका दर्शन होता है, उनके मुख से प्रवचन सुनने को होता है, तुरंत बल आ जाता है। तो ये सब लोग अनुभव किए, तो ये बलराम जी का एक अंश है। इसलिए कहा गया है कि चैतन्य चरितामृत में कि मेरे गुरु कोई और नहीं है, वो मेरे गुरु बलराम जी के भगवान के दास है। भले ही शास्त्र कहता है कि मेरे गुरु भगवान के दास है, मैं उसको मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं मानता हूँ कि वो उनका प्रकाश है, यानी उनके ही विस्तार है। तो ये बलराम जी का ये तत्व है। तत्व विश्लेषण के अनुसार सबसे पहला ये जानना चाहिए हमारे मूल गुरु बलराम जी हैं, मूल दीक्षा गुरु। और दीक्षा गुरु कौन है? ये श्री श्री राधा मदन मोहन जी संबंध ज्ञान का अधिदेव को साथ हमारा संबंध को स्थापना करने वाले हैं। क्या उसके और एक विशेष संबंध भी है बलराम जी की लीलाओं के साथ, वो तो बाद में हम चर्चा करेंगे। थोड़ा सा आगे तत्व चर्चा करने का, लीला का चर्चा जब करेंगे तो उस समय करेंगे, लेकिन मूल तरीके से जानना चाहिए राधा मदन मोहन जी के भक्तों को। भले ही जन्माष्टमी है, राधाष्टमी, अनेकों अनेक उत्सव है, लेकिन ये मंदिर के भक्तों के लिए बलराम जयंती का विशेषता है, क्योंकि बलराम जी आते हैं सारे जीवों को राधा मदन मोहन जी के पास आने के लिए, चाहे वो कोई अन्य विग्रह भी क्यों ना हो, लेकिन बलराम जी का केवल एक ही नज़र रहता है। मैं कैसे इन बद्ध जीवों का संबंध जो है, संबंध अभिदेव कौन है, आदिदेव कौन है, श्री श्री राधा मदन मोहन जी के साथ कैसे स्थापना करूँगा। तो बलराम जी के बारे में चर्चा करते सबसे पहले मैंने कहा कि वो बल से बहुत स्ट्रेंथ आध्यात्मिक बल है उनके पास। तो आध्यात्मिक बल के द्वारा क्या करते हैं वो, ये बद्ध जीवों को ऐसा शक्ति प्रदान करते हैं जिसके द्वारा वो ये भौतिक गुणों के साथ संघर्ष कर सकते हैं। हम हमेशा सोचते हैं कि भगवान की कृपा के ऊपर आधारित रहते हैं कि भगवान कृपा करो, ये अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ में हमारा प्रयास भी होना चाहिए प्रगति करने के लिए। अगर आध्यात्मिक प्रगति नहीं करेंगे या प्रगति करने के लिए प्रयास नहीं करेंगे, आप केवल कृपा का याचना करते रहेंगे, तो भगवान कृपा दे भी दे लेकिन प्रगति नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि हम प्रयास नहीं कर रहे। तो कृष्ण जो है वो कृपा प्रदान करते हैं, लेकिन बलराम जी वो बल प्रदान करते हैं। ये दोनों में अंतर है जो साधक को ये ध्यान रखना चाहिए। बलराम जी के पास जाके, हे बलराम जी आप मुझे कृपा करो, उद्धार करो, बलराम जी क्या करेंगे, ठीक है मैं करूँगा, लेकिन मैं केवल बल के रूप में प्रदान करूँगा, आध्यात्मिक बल दूंगा जिसके द्वारा आप उद्धार हो सकते हो। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं गुरु का कृपा या बलराम की कृपा प्राप्त करके थोड़ा सा आध्यात्मिक जीवन का शॉर्टकट ढूंढ लूँगा। आध्यात्मिक जीवन में कोई शॉर्टकट नहीं है। इसी बात को वर्णन करने के लिए गुरु हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं, या गुरु का शिक्षा ऐसी शिक्षा है जिसके द्वारा हमको बल प्राप्त होता है आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए। वैसे भौतिकवादी जो जिनका आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता है, वो सोचते हैं कि मैं क्या करूँगा, मैं भगवान की प्रार्थना करूँगा और सारे दुखों से मुक्त हो जाऊँगा। या आध्यात्मिक जीवन में प्रगति जो है इतना सरल नहीं है। वो गुरु हमको ज्ञान देते हैं, वो ज्ञान का बल से हमको प्रयास करने के द्वारा भगवान को प्राप्त कर सकते, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। वैसे आप सबने बात को सुना होगा, भगवान की कृपा से गुरु प्राप्त होते हैं और गुरु का कृपा से भगवान प्राप्त होते हैं। तो ये बलराम जी को कैसे प्राप्त हुए हमको, या गुरु कैसे प्राप्त हुए, बलराम जयंती को हम कैसे मना पा रहे हैं, क्योंकि भगवान का कृपा है वो, राधा मदन मोहन जी कृपा है तभी है जब हम इस बलराम जयंती का विशेषता को जान पा रहे हैं या बलराम जी को प्राप्त कर पा रहे हैं, गुरु को प्राप्त कर रहे हैं। और जैसे गुरु का आदेश को प्राप्त करेंगे, हम बल प्राप्त करेंगे और आध्यात्मिक प्रगति करेंगे, भगवान प्राप्त होते हैं। तो जैसे भगवान प्राप्त होते हैं, तो भगवान प्राप्त होने का अर्थ क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा एक विशेष सिद्धांत को वर्णन करते हैं। जैसे कोई उत्सव आता है, खास करके उत्सवों का शुरुआत बलराम जयंती से होता है। अब देखिए पूरा पिछले बहुत दिनों तक कोई ऐसा विशेष उत्सव नहीं आया 2-3 महीने में, लेकिन अभी बलराम जयंती से शुरू हुआ, उसके बाद तुरंत जन्माष्टमी आता है, तुरंत क्या आता है, फिर वापस राधाष्टमी आता है, उसके बाद उत्सवों का लाइन लग जाता है। तो इसके पीछे आचार्यगण इस बात को कहते हैं कि अगर बलराम जयंती को आप अच्छी तरह से मनाएंगे तो क्या होता है, तो श्री कृष्ण प्रकट होते हैं तो जन्माष्टमी मना सकते हैं। और जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं लोग, ताकि राधाष्टमी की तैयारी करने के लिए जन्माष्टमी मनाते हैं। यार ये तो राधाष्टमी के दिन विशेष तरीके से चर्चा किया जा सकता है। आचार्य कहते हैं कि भागवतम में जैसे भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए तो तुरंत वर्णन है कि नंद महाराज के आंगन में साक्षात लक्ष्मी जी, या लक्ष्मी का अर्थ है श्रीमती राधा रानी, क्योंकि ब्रज में लक्ष्मी जी का कोई स्थान नहीं है, तो साक्षात राधा रानी वो नंद महाराज के आंगन में नृत्य करने लगी। ऐसा वर्णन क्यों किया गया भागवत में, उसके बारे में आचार्य कहते हैं कि वास्तविकता में हमारा मूल स्थिति है, गौड़ीय वैष्णव का स्थान है राधा दास से, श्रीमती राधा रानी का कृपा प्राप्त करना है। तो भक्त जन्माष्टमी मनाते हैं ये खुशी के साथ राधास में नजदीक आ रहा है। जैसे आप जानते हो कि वृंदावन यात्रा के लिए जब जाते हैं बड़ा उत्साह के साथ ट्रेन में बैठते हैं, लेकिन जैसे मथुरा आता है तो तुरंत बड़े खुश हो जाते हैं। क्यों? वृंदावन नजदीक आ गया। तो वैसे राधाष्टमी मनाते हैं, जन्माष्टमी मनाते हैं, इतने खुशी के साथ। क्यों खुशी के साथ मनाते हैं? राधाष्टमी नजदीक में आ गया, ये संकेत मात्र है। लेकिन उस जन्माष्टमी को अच्छे तरह से मनाना है इस भाव से, तो कैसे मना पाएंगे? जब हम बलराम जयंती को अच्छे तरह से मनाएंगे। तो बलराम जयंती को अच्छी तरह से मनाने का अर्थ क्या है? बलराम जी के बारे में बहुत श्रद्धा से श्रवण करना, बलराम जी का तत्व को अच्छी तरह से जानना। क्योंकि ऐसा कहा गया है शास्त्रों में, कृष्ण तत्व को जानना इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप शास्त्र अध्ययन कर लेंगे तो कृष्ण का थोड़ा सा कृपा भी प्राप्त हो जाता है, तो आपको कृष्ण तत्व मालूम हो जाता है। लेकिन राधा तत्व, गुरु तत्व और धाम तत्व, इसको समझना बहुत मुश्किल है। तो ये जो बलराम तत्व है ये बड़ा जटिल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी वही बलराम जब हमारे गुरु के सामने प्रकट होते हैं, वही बलराम जी इस बलराम तत्व को समझाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी हमारे जो आचार्य हैं, तो उन्होंने बलराम जी के विषय में प्रवचन देते हुए बलराम जी का तत्व को बहुत सरल तरीके से समझाया। तो उन्होंने कहा कि एक सेंटेंस में, एक लाइन में उन्होंने कहा, बलराम इज वाइट कृष्णा एंड कृष्णा इज ब्लैक बलराम। तो सब लोग एकदम चकित हो गए, क्या बता रहे हैं। तो उन्होंने सरल भाषा में कहा, कृष्ण जो है वो काले बलराम है और बलराम जी जो है वो सफेद कृष्ण है। यानी दो, एक तरीके से देखा जाए उन दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो ये बताने के बाद भी सब लोगों का चेहरे में ऐसा लग रहा था कि कोई समझ नहीं रहा है। तो प्रभुपाद जी ने एक बच्चे को बुला के पूछा कि व्हाट कृष्णा इज बलराम। तो बच्चे ने कहा, वाइट कृष्णा इज बलराम। देन बाद में पूछा प्रभुपाद जी ने कि व्हाट बलराम इज कृष्णा। तो ब्लैक बलराम इज कृष्णा। तो ये थोड़ा सा अच्छा समझने के लिए बड़ा सरल भाषा में कि बलराम जी और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। कैसे तत्व के दृष्टिकोण से देखा जाए कोई अंतर नहीं है। भगवान बलराम जी भी वो कृष्ण के स्वयं रूप है और कृष्ण भी बलराम जी जो है वो कृष्ण के स्वयं प्रकाश है। तो एक स्वयं रूप और स्वयं प्रकाश है। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी पाद को भगवान के अनेकों रूपों के बारे में वर्णन करते हैं, अनेक रूपों के बारे में वर्णन करते हुए उन्होंने कहा भगवान के तीन रूप होते हैं। एक है स्वयं रूप, स्वयं प्रकाश, और स्वयं रूप तदेकात्म रूप और आवेश। तो ये तीनों प्रकार की चीज़ों में सबसे पहला है स्वयं रूप। ये स्वयं रूप के अंतर्गत दो बातें हैं, स्वयं प्रकाश और स्वयं रूप। ये स्वयं प्रकाश करते हैं कि भगवान कृष्ण अपने आप को विस्तार करते हैं। तत्व में दृष्टिकोण से दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन रंग में और रूप में अंतर रहता है। तो कृष्ण और बलराम के स्वरूपों में अंतर क्या है? तो कृष्ण जो है वो काले रंग के हैं, घने बादल के रंग के हैं। बलराम जी एकदम बिल्कुल सफेद रंग के हैं, इस वाइट कॉम्प्लेक्शन। फिर भी बलराम क्या करते हैं? वो कृष्ण के जो रंग है उसको धारण करते हैं। वो कैसे धारण करते हैं? कृष्ण के भक्तों के द्वारा धारण करते हैं। इसलिए जयदेव गोस्वामी बलराम जी की जो सेवा की भाव को वर्णन करते हुए अपने दशावतार स्तोत्र में वर्णन करते हैं बलराम जी का। तो बलराम जी भले ही कृष्ण है या कृष्ण के अभिन्न है, लेकिन फिर भी ये मानना चाहिए भगवान कृष्ण वो सेवक भगवान है और बलराम जी सेवक भगवान है। उन दोनों में अंतर क्या है? एक है सेवक, यानी कृष्ण सेवा को स्वीकार करते हैं और बलराम जी क्या करते हैं? सेवा करते हैं, यानी सेवक है। एक सेवक भगवान है और दूसरे हैं सेव्य भगवान। जैसे गुरु भी भगवान से अभिन्न है, जैसे हम रोज गुरुअष्टकम में गाते हैं, क्या गाते हैं कि साक्षात हरित्वेन, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र, सारे शास्त्र इस बात को कहते हैं, खास करके श्रीमद् भागवत में स्वयं कृष्ण इस बात को कहते हैं। क्या कहते हैं? आचार्यां मां विजानियां, आचार्यां मां विजानियां हे उद्धव, जानो कि मेरे में और आचार्य में कोई अंतर नहीं है, तो मैं ही हूँ आचार्य। आचार्य जो है वो मेरे में मेरे ही प्रतिनिधि है, ये समझो कि मैं ही हूँ। उस तरीके से हमको पूजा करो, न अवमान्यत कर रहे चित्र, कभी अवमान मत करो, न मत मुद्दे हा, उनको कभी ये मत देखो वो भी मेरे जैसे मरने वाला व्यक्ति है, मनुष्य, साधारण मनुष्य है। न सुइये तब उनके पास, कभी उनके साथ भी असूया मत करो। सर्वदेव में यो गुरु, सारे जो देवता है वो गुरु के चरण कमलों में निवास करते हैं। इसलिए अगर गुरु का पूजा किया जाए तो कोई अन्य कोई देवता का पूजा करने की जरूरत नहीं है। तो समस्त शास्त्र, सारे शास्त्र में इस बात को कहा गया है। तो ये साक्षात हरित्वेन, तो इसलिए जैसे बलराम जी सेवक भगवान है, तो हमारे गुरु भी सेवक भगवान है। ही इज अ सर्वेंट कृष्णा एंड कृष्णा इज सर्व कृष्णा, सर्व भगवान, सेवक भगवान और सेव्य भगवान। तो कृष्ण जो है सेव्य भगवान है और बलराम जी जो है वो सेवक भगवान है। तो सेवक क्या करता है? सेवक वो जो है भगवान की बहुत सेवा करता है और अपना पूरा सामर्थ्य के साथ सेवा करता है। समझ लीजिए कि हम भी भगवान की सेवा करते हैं तो जितना हमारा सामर्थ्य है सारे सामर्थ्य के साथ सेवा करते हैं। तो बलराम जी के पास अगर सामर्थ्य देखा जाए, अनंत सामर्थ्य है, अनंत सामर्थ्य के साथ भगवान बलराम जी कृष्ण की सेवा करते हैं। तो बलराम जी का जो ये सेवा की जो भाव है ये इतना महान है कि उनके बराबर कोई सेवा कर ही नहीं सकता। जो स्थान भगवान ने बलराम जी को दिया है सेवा के मामले में, कोई भी जीव को किसी को भी प्राप्त नहीं है। जैसे आप सबको मालूम है भगवान श्री कृष्ण का सेवा पांच प्रकार किया जा सकता है। एक है शांत रस में किया जा सकता है, दूसरा दास्य रस में, तीसरा है वो साख्य रस में, और चौथा है वात्सल्य रस में, और पांचवा है वो माधुर्य रस में। ये पांच रसों में कृष्ण का सेवा किया जाता है। तो ये बलराम जी का विशेषता क्या है? ये पांच के पांच रसों में सेवा करते हैं भगवान कृष्ण का। जैसे मान लीजिए यशोदामय है तो कृष्ण को वात्सल्य रस में सेवा करती है। अगर सुदामा सीतामा ये सब जितने भी सखाए हैं कृष्ण का, वो क्या करते हैं? वो साख्य रस में सेवा करते हैं। जैसे चार कुमार है और जितने भी अन्य सामग्रियां हैं, जितने भी लोग हैं जो शांत रस के भक्त हैं, नवविद वगैरह है, वो भगवान की शांत रस में सेवा करते हैं और उनका अन्य रसों में सेवा नहीं होता। लेकिन बलराम जी ऐसे सेवक है जो कृष्ण का प्रत्येक रस में सेवा करते हैं। शांत रस में भी सेवा करते हैं, दास रस में भी सेवा करते हैं, और साख्य में भी सेवा करते हैं, और वात्सल्य में और माधुर्य में। तो बलराम जी का विशेष स्थान है। वो कैसे ये पांच की पांच रसों में सेवा करते हैं थोड़ा सा बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी बलराम जी की भक्ति का वर्णन हो रहा है। इतना महान भक्ति है बलराम जी का, उन्होंने सोचा कि मेरा जो रंग है वो सफेद है तो मैं कृष्ण का प्रसाद प्राप्त करना चाहता हूँ। इसलिए उन्होंने क्या किया कि बलराम जी ने कहा कृष्ण का जो रंग है नीला है, इसलिए मैं क्या करूँगा, कृष्ण का जो नीला रंग है उसको मैं वस्त्र के रूप में धारण करूँगा। इससे बलराम जी के वस्त्र हमेशा नीले होते हैं, ब्लू कलर ड्रेस होता है। बलराम जी कहते हैं ना, आप देखिए या अन्य बलराम जी का जो ड्रेस हमेशा नीला रंग का होता है, नित्यांतों का भी ड्रेस नीला होता है। अगर नीला रंग का ड्रेस नहीं होता है तो एक भक्त ने मुझे पूछा, प्रभु जी मैं कैसे पहचानूं कौन सा गौर है कौन सा निताय है? कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, कभी कभी वो अभिषेक करने के लिए जाते हैं वो थोड़ा इधर उधर हो जाता है। तो मैंने कहा कि आप देखो नीचे जो कमल है जिनके ऊपर भगवान विराजते खड़े रहते हैं, वो कमल जिसके ऊपर जो लाल रंग का पेंटिंग है, तो ये समझ लीजिए कि वो चैतन्य महाप्रभु है, गौर है। और जिसके ऊपर जो कमल जो है ब्लू रंग का है वो निताय है। तो ये पहचान है। कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, कभी कभी राज सर वो पेंटिंग में भी गड़बड़ कर देते लगते नहीं करते क्योंकि बहुत पहचाना बहुत मुश्किल है, क्या हाइट है कैसे खड़े है बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी ये ध्यान रखना चाहिए नीले रंग के। इसलिए जय जय गोस्वामी उस बात को कहते हैं, लीला का स्मरण करते हुए कहते हैं कि जब वो लीला का चर्चा करेंगे तो विस्तार से चर्चा किया जाएगा। वो कहते हैं वहसी विकुशी विशदे वसनम जलधाभम हलयति भीति मिलित यमुनाभम। यमुनाभम यमुना का जो रंग है, क्या रंग है उनका? नीला रंग। क्यों है यमुना का रंग नीला क्यों है? क्योंकि यमुना महारानी कृष्ण की इतनी भक्ति में तल्लीन है कि उनका पूरा जो रंग है नीला हो गया, कृष्ण के स्मरण में पूरा नीला हो गया, तो उसकी वजह से यमुना का जो रंग नीला हो गया। इसलिए बलराम जी ने सोचा कि कृष्ण की जो भक्ति है वो पूरा यमुना में है, भक्ति की स्वरूपिणी है, इसलिए मैं क्या करूँगा वो जो रंग है यमुना का जो जल है उसको मैं वस्त्र के रूप में धारण करूँगा। इसलिए बलराम जी का जो वस्त्र है वो यमुना का जल है। यमुना का जल क्या है? भक्ति है। अब देखिए बलराम जी अपनी स्वयं अपनी आचरण के द्वारा सिखाते हैं, जैसे गुरु अपनी आचरण के द्वारा सिखाते हैं भक्ति को अपने वस्त्र के रूप में धारण करना चाहिए। वस्त्र का अर्थ है श्रृंगार, यानी हमारा वास्तविक सुंदरता जो है वो भक्ति के द्वारा बढ़ता है। हमारा वस्त्र का अर्थ है हमारा पूरा जो जीवन है वो भक्ति के द्वारा सजाना चाहिए, जिसके द्वारा हम कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। ये बलराम जी अपने अपने जो ये स्वरूप में ही, वो अपना स्वरूप में ही कैसे भक्ति करना चाहिए, हाँ वो अपनी आचार्य तत्व को प्रकाशित कर रहे हैं। और दूसरी बात, क्या बलराम जी कृष्ण के पास जाके सीधा भक्ति नहीं मांग सकते थे? नहीं, बलराम जी ने क्या कहा, यमुना का जो वस्त्र है उसको मैं धारण करूँगा, या वो जल है उसको वस्त्र के रूप में धारण करूँगा। इन्हें भक्ति जो है वो भक्तों के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो ऐसे अनेकों अनेकों सिद्धांत, भक्ति के सिद्धांत जो है वो बलराम जी अपने स्वरूप में ही वर्णन करते हैं, स्वरूप में ही प्रकाशित कर देते हैं, जस्ट इन इस फॉर्म। तो बलराम जी का जो भक्ति का जो वर्णन है, महिमा है, ये अगाध है और अनंत है, क्योंकि बलराम जी स्वयं अनंत है, अनंत बल है। तो इतना अनंत है, भक्ति का मूल सार क्या है? गुणगान, श्रवण, कीर्तन। तो बलराम जी अपने आप को विस्तार करते हैं अनंत देव के रूप में, अनंत देव के रूप में विस्तार करते हैं, और क्या करते हैं, अनंत मुखों से उन अनंत भगवान के उन अनंत गुणगान को अनंत काल से गुणगान कर रहे हैं। ये करने के बाद भी एक गुण का भी वर्णन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। ये देखिए बलराम जी का विशेषता है, उनके पास इतना वर्णन, इतना शक्ति है उनका गुणगान करने का, वर्णन भगवान का गुणों का वर्णन करने की इतना शक्ति है, सामर्थ्य है कि एक गुण को वर्णन करने के लिए प्रयास कर रहे हैं बलराम जी, और इतना गहराई से वर्णन करते जा रहे कितने अनंत मुख से करते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो एक गुण का भी पूरा अभी कर नहीं हो रहा है। तो इसके द्वारा बलराम जी स्वयं प्रकाशित करते हैं कितना अनंत है भगवान श्री कृष्ण, आप अपने अनंत में। तो ये स्वयं बलराम जी खास करके ये अनंत गुणगान करने की जो शक्ति है वो सारे आचार्यों में वो प्रकाशित करते, खास करके बलराम जी जो उनका विशेष विस्तार है अनंत, उनका जो वर्णन करने की जो शक्ति है, गुणगान करने की शक्ति है, ये जो शक्ति का पूर्ण अवतार है वो श्रीपाद रामानुजाचार्य। इसलिए दक्षिण भारत में ये जो बलराम जयंती है, ये बलराम जयंती है और लक्ष्मण जयंती है, उनको बड़े धूमधाम से मनाते हैं, खास करके श्री संप्रदाय के आचार्य, क्योंकि वो इनका मान्यता ये है कि मान्यता ही नहीं सही बात की है कि बलराम जी ही वो रामानुजाचार्य के रूप में प्रकट हुए, लक्ष्मण जी ही रामानुजाचार्य के रूप में प्रकट हुए। तस्तक में वो रामानुजाचार्य लक्ष्मण हैं, बलराम हैं, लेकिन इसका और गहराई से समझना है, ये बात को समझना चाहिए कि बलराम जी ने अपने अनंत रूप या अनंत देव के रूप से प्रकट होके उन्होंने क्या किया, अनंत देव क्या कर रहे हैं, अनंत काल से भगवान को गुणगान कर रहे हैं। तो उनको गुणगान करने की जो शक्ति है, द ग्लोरिफाइंग पोटेंसी ऑफ अनंत वॉज इन्वेस्टेड इन रामानुजा। तो रामानुजाचार्य के अंदर बलराम जी ने क्या किया, वो अनंत देव के जो भगवान की गुणगान करने की शक्ति के द्वारा आवेशित किया। तो वैसे श्रीपाद वल्लभाचार्य है, वो भी बहुत गुह्य ग्रंथों में, पुष्टि मार्ग ग्रंथों में वर्णन किया गया है कि हम उनको अनंत के रूप में मानते हैं, बलराम जी के रूप में स्वीकार करते हैं। तो उसमें क्या है कि आचार्य वर्णन करते हैं कि ये जो श्रीपाद वल्लभाचार्य है, बलराम जी के या अनंत देव के जो प्रकाश है, ये प्रकाश के प्रकाश शक्ति के द्वारा आवेशित है। तो गुरु जो है अपनी वाणी के द्वारा और दूसरा अपनी आध्यात्मिक बल यानी कि प्रकाश के द्वारा सारे जीवों को पवित्र करते हैं। तो ये जो प्रकाश है और दूसरा गुरु के मुख से उत्पन्न हुआ जो कृष्ण कथा है, वाणी है, ये दोनों बलराम जी की शक्ति है। तो जब हम गुरु के मुख से जब कृष्ण कथा का श्रवण करते हैं, ये समझना चाहिए कि अनंत देव स्वयं को बोल रहे हैं और गुरु का जो प्रभाव है, उनकी आध्यात्मिक बल है, वो भी कहाँ से आ रहा है, वो भी अनंत देव प्रदान कर रहे हैं। तो अनंत देव जो है उनका दो नाम है, एक है अनंत है, दूसरा है शेष। ये शेष का अर्थ है वो नाग जिसके ऊपर साथ भगवान लेटे हुए हैं और साथ साथ में सारे ब्रह्मांड उनके ऊपर आधारित है। जितने अनंत कोटि ब्रह्मांड है, अनंत देव शेष नाग के रूप में वो इतने सारे ब्रह्मांडों को धारण करते हैं, जैसे ज्वेल्स, जैसे कोई मणि, मणियों का जो हार है, वो हार को अगर कोई धारण करता है तो वैसा है। जैसे अनंत देव के अनंत मुख है, प्रत्येक मुख में अनेकों अनेकों हार है, मोतियों का हार है, ये सारे ब्रह्मांड जो है अनंत देव उस प्रकार धारण करते हैं शेष नाग के रूप में। वैसे अनंत शेष कहा जाता है, दोनों एक ही है लेकिन फिर भी उनके क्रिया के अनुसार अलग अलग तत्व है। जैसे गुणगान करने की बात आता है और शैया के रूप में भगवान को बैठाने की बात आता है तो उनको अनंत कहा जाता है, क्योंकि अनंत भगवान को बिठाना होगा तो उनको अनंत विस्तार का शरीर होना पड़ेगा, और उनका गुणगान करना होगा तो उनका अनंत तरीके से गुणगान करने के लिए अनंत मुख चाहिए। लेकिन साथ साथ में भगवान बलराम जी अनंत रूप में जब प्रकाशित होते हैं, ये भौतिक जगत को जब धारण करना पड़ता है उनको शेष कहा जाता है, शेष नाग कहा जाता है। वैसे एक ही नाग है लेकिन फिर भी शेष कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब पूरा भौतिक ब्रह्मांड, सारे ब्रह्मांड नाश हो जाते, प्रलय हो जाते, अत्यंतिक प्रलय हो जाता है, तो समय कौन बचा है? जो शेष करते बचा हुआ, कौन बचे हैं? केवल शेष बचे हैं, इसलिए उनका नाम पड़ा शेष। तो एक ही नाग है, उनको कभी अनंत कहा जाता है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, आध्यात्मिकता या आध्यात्मिकता के साथ संबंध में, जब भौतिक जगत के साथ संबंध में देखा जाता है वही नाग को शेष कहा जाता है। इसलिए दोनों को मिला के उनको अनंत शेष कहा जाता है। और बलराम जी के बारे में चर्चा करते हुए हमने कहा बलराम जी किस प्रकार भगवान का सेवा करते हैं, किस रूप में सेवा करते हैं, पांचों के पांच उसमें सेवा करते हैं। तो वो कैसे सेवा करेंगे? शांत रस में, शांत रस में बलराम जी भगवान का सेवा करते हैं, ये अनंत शेष के रूप में, अनंत शेष के रूप में सेवा करते हैं। सबसे पहला वो शैया बनते हैं, ये बलराम जी जो भगवान जो है वो योग निद्रा में है। योग निद्रा में मतलब उनको बिस्तर चाहिए, कोई तो कोई बेड चाहिए, तो बलराम जी जो है भगवान का बेड बनते हैं। तो ये शैया है, लेकिन वो ऐसा बेड है जो साथ साथ में छाता भी बन जाता है, क्योंकि उनका जो फण है वो तो उसका छाता है। और भगवान कृष्ण के जूते हैं वो भी बलराम जी के विस्तार है। और जितने भी चीज़ें हैं जो सक्रिय सेवा में भाग नहीं लेते भगवान के, ऐसे मान लीजिए जूता है, आप ये नहीं बोल सकते ये जूता इधर आओ और मैं पहनना चाहता हूँ, नहीं, आपको जूते के पास जाना पड़ेगा। यानी जूता आपका सेवा करता है लेकिन कैसा सेवा करता है, वो सक्रिय तरीके से नहीं करता। मान लो आपका नौकर बुला सकते, आओ ये लेके आओ, ये लेके आओ बोल सकते हो, यानी उनके पास क्रिया शक्ति है, लेकिन ये जूता है तो उसके पास वो सक्रियता नहीं होता है। सेवा है, सेवा करने की भाव है या सेवा करने की प्रवृत्ति है, लेकिन वो सक्रियता से नहीं है। इसलिए ये जो शांत भक्त होते हैं, जैसे कभी कभी वो शांत भक्त हमारे मंदिर में प्राप्त होते हैं, शांति से बैठे रहेंगे, तो उनको बोलो करो ऐसे बैठे रहेंगे, हाँ करेंगे, बोलेंगे शांत रस में है, लेकिन वो भी सेवा, वो भी भक्त है लेकिन ज़्यादा शांत रहते हैं। लेकिन कुछ भक्त तत्पर रहते हैं भगवान की सेवा करने के लिए, तो ये शांत रस में भक्त है। तो ये जितने भी जैसे मंदिर है, मंदिर के जितने प्रकार है ये भी शांत रस में भगवान की सेवा करते हैं, और जितने भी बर्तन है, जितने भी आचमन कप है, आरती प्लेट है, जो भी भगवान की सेवा में इस्तेमाल किया जाता है वो सब कौन है? अनंत शेष के विस्तार है, बलराम जी के विस्तार है, बलदेव तत्व है, मृदंग है, करताल है। करताल अपने आप से नहीं बचता है, मृदंग अपने आप से नहीं बचता है, ये सब शांत रस के भक्त है, ये सब बलराम जी के विस्तार है। कोई भी चीज जो भगवान की सेवा में इस्तेमाल किया गया है वो सब बलराम जी के विस्तार है। बलराम के आवेश के बिना हम उस वस्तु को भगवान की सेवा में नहीं लगा सकते। इस बात को श्रीपाद वाजराज आचार्य जो मध्य संप्रदाय के आचार्य वो कहते हैं कि भगवान की सेवा में जो भी वस्तुएं इस्तेमाल होता है वो सब बलराम जी का ही विस्तार है। जैसे आप मान लीजिए मृदंग बजा रहे हैं, ये मृदंग कौन है? मृदंग साक्षात बलराम जी है। वैसे गौड़ी वैष्णव बंगाल में जाएंगे बोलेंगे नित्यानंद प्रभु बोलेंगे, वैसे नित्यानंद प्रभु और बलराम जी में कोई अंतर तो है नहीं, बलराम स्वयं बलराम जी नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए। आप दीवार है, मंदिर का दीवार है, ये बलराम जी है। इसलिए ऐसा हमेशा इस बात को कहता हूँ, लेकिन बुरा मत मानिएगा। तो कभी कभी मंदिर में भक्त लोग क्या करते हैं, वो आते हैं और दीवार के वजह से हो जाते हैं, तब मैं प्रयास करता हूँ लोगों को थोड़ा सा हटाने के लिए, लेकिन ये अपराध माना जाता है। दीवार के ऊपर हमको दीवार का सेवा लेना नहीं चाहिए, हमको बलराम जी का सेवा करना चाहिए, बलराम का सेवा लेना नहीं चाहिए। बलराम जी जो है वो कृष्ण का सेवा करते हैं, तो हमारी सेवा करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए अनेकों प्रकार की इस प्रकार की जो छोटे छोटे बातें हैं भगवान की सेवा में इस्तेमाल की ये वस्तुएं हैं, ये सब बलराम जी के विस्तार है, इसलिए उनके प्रति कभी अपराध नहीं करना चाहिए। ये बलराम तत्व का विशेषता ये है कि वो शांत रस में इस प्रकार भगवान की अनेकों अनेकों तरीके से सेवा करते हैं। तो उनके शैया बनते हैं, कभी उनके जूते बनते हैं, कभी उनके अम्ब्रेला बनते हैं, और आधार शक्ति है। जहाँ जहाँ जो भी आधार है हर वस्तु का, हर कार्य का, वो बलराम जी है। इसलिए जब पूजा करने के लिए पुजारी आते हैं, सबसे पहला पानी छिड़क के क्या बोलते हैं, आधार शक्ति नमः, प्रणाम किया जाता है आधार शक्ति को, क्योंकि आधार के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। मान लो अगर मान लो मैं बैठा हूँ, कुछ आधार है तभी तो बैठ सकते हैं। अगर कोई भी चीज़ को कहीं भी कुछ वस्तु रखना है, कुछ भी करना है, आधार की आवश्यकता है। इसलिए बलराम जी कौन है? वो अनंत देव के रूप में विस्तार करते हैं और आधार शक्ति का मूल स्रोत है। जो आजकल ग्रेविटेशन के नाम पे जब चलता है, ग्रेविटेशन थ्योरी, वो सब चीज़ें, ये आधार शक्ति का मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो ये आधार शक्ति की वजह से सबको जगत में हर चीज़ बराबर चल रहा है। तो कृष्ण का भी सेवा करना है, उसका भी कुछ आधार चाहिए। वो आधार कौन है? बलराम जी है। सब्सट्रैटम, आधार को सब्सट्रैटम बोला जाता है अंग्रेजी में, ये सब्सट्रैटम फॉर एवरीथिंग। अगर कोई भी चीज़ कुछ करना है हमको आधार की आवश्यकता है। इसलिए बलराम जी जो है वो सत शक्ति का अधिष्ठात देव है। जैसे आपने सुना होगा सत चित्त और आनंद, ये भले ही सत चित्त आनंद सुनते हैं उनकी गहराई से जानना आवश्यक है। वैसे हम जानते हैं आत्मा जो है सत चित्त आनंद है, लेकिन ये सत चित्त और आनंद का जो टेक्निकल नेम है, जो एक दार्शनिक नाम है, संवित संधिनी और हलादिनी, संवित संधिनी और हलादिनी। जो सत है उसको संधिनी कहा जाता है, और चित्त है उसको संवित कहा जाता है, और हलादिनी जो है वो आनंद शक्ति है, या आनंद को हलादिनी कहा जाता है। और ये तीनों में कि सत है या संधिनी शक्ति है, ये बलराम जी उसका अधिष्ठान देव है, या संधिनी शक्ति का मूर्तिमान स्वरूप है। ऐसा नहीं बोल सकते संधिनी शक्ति का मूर्तिमान स्वरूप है, क्योंकि बलराम जी शक्ति नहीं है, वो पुरुष तत्व होने के नाते ये संधिनी का वो नियंत्रण करने वाले देव है। तो संधिनी का अर्थ क्या है? संधिनी का अर्थ है एग्जिस्टेंस, सत का अर्थ एग्जिस्टेंस, एटर्नल एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस का क्या है? पूरा आध्यात्मिक जगत और पूरा भौतिक जगत, ये दो ही प्रकार के एग्जिस्टेंस है, दो ही प्रकार का अस्तित्व है। तो बलराम जी ही ये पूरा आध्यात्मिक जगत का विस्तार करते हैं। जितने वैकुंठ लोक के गोलोक है, प्रत्येक लोग आध्यात्मिक जगत के और ये भौतिक जगत के, ये दोनों सब का जो विस्तार है वो बलराम जी से होता है। तो इसलिए प्रत्येक वस्तु, कोई भी चीज दिखाई पड़ रहा है, वो हर चीज बलराम जी के विस्तार है, भगवान की स्वयं लगता है। जैसे हम ये टेबल जो है, ये क्या है, इस्तेमाल किसके लिए, भगवान की सेवा, भागवत को रखने के लिए इस्तेमाल, भागवत कौन है, कृष्ण है। तो अभी ये बलराम जी हो गए, मान लीजिए आप अपना कोई कबोर्ड है उसके ऊपर आप भागवत रखते हो, भागवत कौन है, कृष्ण है, तो जो कबोर्ड है वो बलराम जी हो गए। अब देखिए कृष्ण भक्ति का अर्थ है, प्रभुपाद से एक व्यक्ति ने पूछा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, तो प्रभुपाद ने कहा टू बी कॉन्शियस ऑफ कृष्ण, टू बी कॉन्शियस ऑफ कृष्ण कहते हैं हमेशा कृष्ण का स्मरण करना। अब देखिए बलदेव का तत्व को जानने के द्वारा हमको कृष्ण कॉन्शियस होने में बहुत आसान हो जाता है। और जैसे हमने कोई भी चीज को धरे, ये तो भगवान का मंदिर है, हाँ, तो इसलिए क्या करना चाहिए, ये बलराम जी का विस्तार है, बलराम जी का विस्तार है तो हमको आदर देना चाहिए। तो उसको तदीय वस्तु कहा जाता है, और एक भाषा में या भक्ति की भाषा में तदीय वस्तु का अर्थ है जो भी वस्तु भगवान के साथ सीधा संबंध में, उनको तदीय वस्तु कहा जाता है। गुरु हुआ और जो भी सामग्री जैसे मृदंग करताल जितने भी हैं, तो ये सब बलराम जी के विस्तार है। तो सत शक्ति का आधार है, इतना हद तक कि बलराम जी फल को धारण करते हैं। वैसे ये भी ध्यान में रखना चाहिए, भगवान के पास सुदर्शन है, कृष्ण के पास, आपने देखा वृंदावन में कृष्ण के हाथ में सुदर्शन है, नहीं है। और कृष्ण कभी जब द्वारका में मथुरा में है तब वो सुदर्शन को धारण करते हैं, लेकिन वृंदावन में कभी कृष्ण के हाथ में सुदर्शन नहीं रहता, आयुध नहीं होता है। उसी प्रकार हम बलराम जी को हलदर बोलते हैं, लेकिन हलदर कहाँ है, वो हलदर वो मथुरा और द्वारका में है, वृंदावन में कभी भी वो हल को धारण नहीं करते। कभी वृंदावन के पिक्चर्स देखे होंगे बलराम जी का, उधर वो हल को धारण नहीं करते, इज नॉट हलदर। तो ये हल के बारे में भी वर्णन किया जा रहा है कि बलराम जी का जो हल है उसके द्वारा वो संधिनी शक्ति का वो संचालन करते हैं। ये थोड़ा विशेषता ये है, हम हल के द्वारा क्या करते हैं, हल के द्वारा जो किसान क्या करता है, वो हल चला के वो घास, वो जो धान उगाता है, चावल है, गेहूं है, वो सब उगता है। उसी प्रकार ये जो हल बलराम जी, उस हल के द्वारा वो क्या करते हैं, अनंत जीवों को उत्पत्ति करते हैं, अनंत जीव। जैसे एक किसान अनंत खाद्य पदार्थ धान को उत्पन्न कराते हैं ताकि लोगों की सेवा में लगे, उसी प्रकार इस हल के द्वारा वो अनंत जीवों को उत्पत्ति करते हैं और उस अनंत जीवों को कृष्ण की सेवा में लगाते हैं। अब देखिए ये बलराम जी केवल एग्जिस्टेंस ही नहीं है, केवल वो आधार शक्ति नहीं है, वो आधार शक्ति से उत्पन्न हुआ जो जीव है, उन जीव का भी वो स्रोत है, ऐसा शास्त्र में भी कहा गया है। वैसे जीव अनादि है, लेकिन फिर भी ऐसा एक तत्व दृष्टिकोण से कहा जाए तो बलराम जी जो है वो सारे जीव का मूल है, हम सब का मूल है, क्योंकि हम सब सत शक्ति से प्रकट हुए हैं। अभी हमने चर्चा किया बलराम जी किस प्रकार वो शांत रस में सेवा करते हैं भगवान कृष्ण का। अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए चर्चा करते हैं कि बलराम जी की कृष्ण भक्ति करते करते वो दास्य रस में सेवा कैसे सेवा करते हैं, हाउ ही सर्व्स इन दास्य रस। चाहे भी कोई भी रस क्यों ना हो, बलराम जी का एक स्वभाव है, वो कृष्ण को कभी नहीं छोड़ते, He never leaves. तो एक बार ऐसा हुआ, दो बार ऐसा हुआ, बलराम जयंती के दिन, वास्तव में दो लीला हुआ हो, बाद में थोड़ा सा समय मिलेगा तो चर्चा करेंगे आपका अगर आदेश होगा तो। तो बलराम जयंती के दिन कृष्ण को अकेले जाना हुआ, उस दिन बलराम जी को अच्छा ही लग रहा था, लेकिन रोहिणी माता पकड़े बैठे, देख बराबर नहा कर, क्योंकि बलराम जयंती के दिन ऐसे कोई जन्मदिन होता है उनको विशेष संस्कार होता है कि सुबह उठ के उनको अच्छी तरह से नहाया जाता है, और ऐसे साउथ में तो ऑयल बाथ, पूरा तेल के साथ वो कहते हैं आरती करते हैं, सब कुछ बड़ा लंबा चौड़ा रहता है। उस दिन बच्चे को बड़े जन्मदिन है लेकिन उनको बहुत परेशानी होता है माँ के द्वारा, माँ उनको डांट फटकार के ये करो वो करो नाना प्रकार का हंगामा करो। उसी प्रकार रोहिणी माता बलराम जी के साथ कर रही थी, तो सारे कृष्ण और सारे ग्वाल बाल खड़े थे, बलराम जी क्यों नहीं आ रहे हो? रोहिणी माता ने कहा तुम जाओ, कृष्ण अकेले गए। तो उस दिन एक ब्रह्ममोहन लीला हुआ था। तो ठीक एक साल के बाद जब भगवान कृष्ण गए, ब्रह्ममोहन लीला का संपूर्ण हुआ, उस समय बलराम जी के बलराम जयंती के दिन हुआ था, तो उस दिन भी बलराम जी नहीं गए। तो कभी लेकिन ये दो अकेशन छोड़ के कभी भी कृष्ण जो है अकेले कभी नहीं गए। जहाँ कृष्ण है पीछे पीछे बलराम जी जाते हैं, इज ऑलवेज। क्यों जाते हैं पीछे पीछे? दास्य रस में, दास्य रस में हमेशा उनकी सेवा करने की भावना रहती है। कहाँ कृष्ण को कभी भी कुछ भी दुख ना लगे, कहीं भी कुछ छोड़ ना लगे, कहीं उनका हमेशा उनको सुख रहे, हर चीज दे के आना। जैसे एक सेवक होता है तत्पर रहता है, मैं कैसे उनका सेवा करूँ कैसे उनका सेवा करूँ, जैसे एक गुरु भी बलराम जी के ये जो दास रस का जो सेवा है वो ज़्यादा प्रकाशित करते हैं। वैसे थोड़ा वात्सल्य भी प्रकाशित करते हैं लेकिन दास रस का जो ज़्यादा जो है वो सेवा दिखाई पड़ता है। जो साधक साधक गुरु होते हैं वो बलराम जी का ये जो एस्पेक्ट है, ये जो किस प्रकार तत्पर रहते हैं कृष्ण का सेवा करने के लिए, हमेशा जैसे तैयार रहते हैं, जैसे चुटकी बजाए तो तुरंत उपस्थित हो जाए, जैसे हनुमान जी हमेशा रामचंद्र का सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं, उसी प्रकार गुरु भी कृष्ण का सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। और साथ साथ में क्या करते हैं, अन्य अन्य शिष्यों को भी भगवान की सेवा में लगाने के लिए तत्पर रहते हैं, इज ऑलवेज इन एंग्जाइटी। उसी प्रकार बलराम जी जो है दास रस में भगवान की सेवा कैसे करते हैं, वो थोड़ा सा उनके 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 मन में चिंता रहती है, एंग्जाइटी रहती है, क्योंकि सेवक को अपने मालिक की सेवा करने की चिंता जब होती है तब उस सेवा में आनंद प्राप्त होता है। इसे भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कि जो कृष्ण की सेवा में जो प्राप्त हुआ जो चिंता है, यही चिंता मेरा आनंद का कारण है। ये बलराम जी उसका मूल आचार्य है इस प्रकार के भाव का, इज ऑलवेज इन एंग्जाइटी, क्योंकि मैं कब सेवा करूँ कृष्ण कुछ हो ना जाए, हमेशा उनका ये चिंता रहता है। खास करके ये चिंता को देख के यशोदा माई ने क्या कहा कि कृष्ण को उन्होंने जाने दिया, तुम जाओ ठीक है अकेले जा सकते हो, लेकिन बलराम जी है ना तो ठीक है जा सकते हो। आपको मालूम है गोपाष्टमी दिन का ये जो लीला है, गोपाष्टमी का दिन का लीला है, बड़ा प्रसिद्ध लीला, बहुत सुंदर लीला है, कि कृष्ण ने कहा कि नहीं अभी मैं बच्चों को लेके नहीं जाऊँगा, अरे मैं 5 साल से बड़ा हो गया हूँ, अभी क्या कितना दिन लेके जाऊँगा बच्चों को, बहुत हो गया है, अरे मैं बड़ा हो गया हूँ तो मैं गाय को लेके जाऊँगा। उस समय ने कहा नहीं नहीं तुम जाओगे गाय के साथ, वैसे इधर इतना शरारत करते हो कि नहीं नहीं भेजेंगे तुम। तो बाद में कृष्ण ने बहुत बहुत अल्लाह किया, बलराम जी ने कहा कि मैं भी जाऊँगा। तो तब यशोदा माई को लगा ठीक है बलराम जी तुम्हारे भरोसे में कृष्ण को भेज रहे हैं, बलराम तो उनके साथ हमेशा रहना। तो यशोदा माई का ये जो आदेश है बलराम जी को, क्या आदेश है कि कृष्ण को कृष्ण जा रहे हैं तो कृष्ण के भरोसे में नहीं भेज रहे उनको, तुम्हारे भरोसे में भेज रहे। तो ये जो आदेश यशोदा माई का आदेश बलराम जी के मन में एक चिंता कारण हो गया, वो चिंता की वजह से हमेशा तत्पर रहते हाउ टू सर्व कृष्ण, हाउ आई शुड सर्व कृष्ण। कभी कभी ऐसा 2 महीने के लिए बलराम जी गए थे वृंदावन, उसका लीला का समय मिला था चर्चा करेंगे। तो उस समय वृंदावन में उनके अनेकों बलराम जी का अलग सेट है गोपियों का, उनके साथ रोज रमण कर रहे थे, सब कुछ हो रहा था, सारे लीला कर रहे थे 2 महीने के लिए, लेकिन एक दिन उनका कृष्ण का स्मरण हुआ। ऐसा स्मरण हुआ कृष्ण का विरह में, वो इतने तल्लीन हो गए और आंखों से आंसू निकलने लगे और पूरा बलराम जी का शरीर जो है खाला हो गया, कंप्लीटली ब्लैक। तो एक बार बलराम जी का पूरा शरीर काला हो गया, क्यों? कि कृष्ण विरह में तल्लीन होते हुए उनका पूरा उनके हृदय में काला था। जैसे ये आचार्य है कृष्ण स्वयं जब आचार्य का रूप धारण किए चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, तब वो जब इमली तालाब में बैठे थे, जैसे वृंदावन परिक्रमा करते इमली तालाब में चैतन्य महाप्रभु आके बैठे, उस समय वो कृष्ण का स्मरण में कृष्ण विरह में उनका पूरा शरीर काला हो गया था। वैसे स्वयं कृष्ण एक दिन श्रीमती राधा रानी के स्मरण में वो पूरा पूरा शरीर जो उनका पूरा सोने का रंग का हो गया था। ऐसा कहा जाता है आप जिसका स्मरण करोगे उनका स्वभाव आपके अंदर आता है और उनका रंग भी आप हमारे अंदर आ जाता है। ऐसे बलराम जी कृष्ण के विरह में, क्योंकि ऐसा एक भी क्षण नहीं था जो कृष्ण को छोड़े होंगे, और वृंदावन में व्रज में होने पर भी उनका कृष्ण का विरह इतना महसूस हुआ बलराम जी को, उन्हें विरह में उनका पूरा शरीर जो है एक दिन खड़ा हो गया। इससे पता कर सकते हैं कि बलराम जी किस प्रकार कृष्ण की सेवा में तल्लीन रहे थे। तो ये दास्य रस है। दास्य रस के बाद अभी नेक्स्ट रस क्या हुआ? साख्य रस। तो बलराम जी भले ही वो दास्य रस में साथ साथ में जा रहे, ये बड़ा मुश्किल बात है कि ये दोनों रसों को साथ साथ में कैसे आस्वादन किया जाए, दोनों रसों में कैसे कैसे उनका सेवा किया जाए। क्योंकि आप अगर मन में भावना है कृष्ण मेरे मालिक है, क्या उसके साथ मित्रता कर सकते हो? तो नहीं हो सकता है। ये केवल बलराम जी के साथ ही संभव है। क्यों? बलराम जी सारे बल से उपयुक्त थे, खास करके बुद्धि का जो बल है बलराम जी में बहुत है। ये बुद्धि भी एक प्रकार का बल है, इतने बुद्धिमान इतने कुशल है। जब वो बलराम जी कृष्ण का साक्य रस में सेवा करते हैं, कृष्ण को जरा सा भी अनुभव होने नहीं देते कि मैं वो उनके दास। सेवा भी होता है, दास रस भी है और साक्य रस दोनों में ये एक्सपर्ट है। ऐसे कभी कभी ये होता है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माता पिता का बात नहीं सुनते, तो माता पिता जो है पछते तो उनका वात्सल्य है, लेकिन अभी क्या दिखाना पड़ता है? मित्रता दिखाना पड़ता है उनको। माता पिता के रूप में व्यवहार करो बड़े बच्चों के साथ, वो नाराज हो जाएंगे। जैसे कभी कभी आपको ये अनुभव भी है कि जैसे बच्चे बड़े होते हैं, हमको भी मालूम है कि एक बच्चा जो है पिताजी जो रोज स्कूटर पे स्कूल में छोड़ने के लिए जाता है, वो जैसे आठवीं कक्षा थोड़ा बड़ा हो गया, तो भले ही वो पिताजी का प्रेम है, उसके बाद बच्चे का एडमिशन हुआ कॉलेज में, होने के बाद पिताजी बोलते चलो बेटा स्कूटर पे बैठो मैं कॉलेज में छोड़ने के लिए जाता हूँ, तो वो जमेगा नहीं उस बच्चे को। तो वात्सल्य तो है लेकिन फिर भी उसको रोकना पड़ता है। रोक के क्या करना पड़ता है? मित्रता को दिखाना पड़ता है। ये बड़ा मुश्किल काम है, ऐसा इतना आसान काम नहीं है। तो उसी प्रकार बलराम जी इतना एक्सपर्ट इतना कुशल है, वो सेवक के रूप में भी है और साथ साथ में मित्र के रूप में। अगर सेवक है तो कृष्ण को थोड़ा हिचकिचापन होता है, तो आ तो बोलना कि तुम मेरे साथ खेलो, बोलने में तकलीफ होता है। तो बलराम जी सेवा भी है, सेवक भी करते और साथ साथ में कृष्ण को इतना फ्रीड होते, बलराम चलो तुम वो ग्रुप में रहना, मैं एक ग्रुप में रहूँगा। कभी भी खेल कूद होता है, कोई गेंद का खेल होता है, कबड्डी होता है, अनेकों खेल कूद जब भगवान अनेकों लीलाओं को व्रज में कर रहे होते हैं, उस समय कभी भी कृष्ण जो और बलराम जो एक पक्ष में नहीं, हमेशा दूसरे ऑपोजिट साइड में है। अब देखिए ऑपोजिट साइड में तो सेवक भी होना है और मित्र के रूप में करना भी है, और कृष्ण का स्वभाव है हमेशा वो कृष्ण हार जाते हैं, ऑलवेज ही लूजर्स इज मैच, और बलराम जी का साइड हमेशा जीतता है। अब ये सब चीज को देख के सहन भी कर रहा है, और साथ साथ में कभी कभी जो है वो कृष्ण क्या करते हैं, बलराम जी को अपने गोद में सुला देते हैं, बलराम जी आओ बैठो मेरा 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 जो जाग वो तकिया बना दो। अभी ये ऐसा कैसे करेंगे? एक तो सेवक का भाव है, एक तो मित्र का भाव है। तो ये जो मित्रता की जो भाव है या साख्य रस है, पूर्ण तरीके से कृष्ण को आस्वादन कराते हैं कंप्लीटली। ऐसा कहा जाता है ये जो साख्य जो लीलाएं हैं, साख्य रस की जो लीलाएं हैं, ये लीलाओं को संपन्न कराते बलराम जी। जैसे माधुरी रस की जो लीलाएं हैं वो पौर्णमासी और वृंदे देवी वो संपन्न कराती हैं, लेकिन साख्य रस की लीलाओं में तो अगर पौर्णमासी और वृंदा देवी अगर हाथ लगाए तो थोड़ा सा गलत हो जाता है, मतलब वो उतना रसाभास हो जाता है। इसलिए भले ही तुलसी महारानी वृंदे देवी और पौर्णमासी पूरा व्रज की लीलाओं का मैनेजर है, लेकिन फिर भी वो साख्य रस की लीलाएं जब होती हैं तो उन्होंने सोचा ठीक है आप बलराम जी आप थोड़ा देखभाल कर लेना, क्योंकि ये खेल कूद का रूल्स एंड रेगुलेशन हमको नहीं मालूम, हमको तो माधुर रस की जो लीलाएं हैं वही आस्वादन होता है। तो इसलिए साख्य रस की जितने भी जो लीलाएं हैं ये सारे लीलाओं को संपन्न कराने वाले बलराम जी हैं, और पूर्ण तरीके से कृष्ण को ऐसा लगता है जब उनके जो मित्र है कृष्ण के ऊपर कूदते हैं तो कृष्ण को ऐसा लगता है कि ये सब मेरे ही अंग है। जैसा कोई आपको स्पर्श करता है ऐसा लगता है कि अरे कौन है, कौन छुआ है, लेकिन अपना ही व्यक्ति अपना ही हाथ आपको स्पर्श होता है कुछ नहीं लगता है। तो कृष्ण को अपने जितने भी शाक्य रस के भक्त है, सुदामा, सीदामा, मधुमंगल, ये सब ऐसा लग रहा था कृष्ण को कि ये मेरे ही अंग है। ये भाव को पूर्ण तरीके से कृष्ण आस्वादन केवल बलराम जी की वजह से कर पाए, जस्ट बिकॉज ऑफ बलराम। तो बलराम जी कृष्ण को मात्सर्य रस में या ये इसके रूप में या शाक्य रस में अनुभव किए। उसके बाद बलराम जी, वही बलराम जी कभी कभी कृष्ण कुछ गलती कर देते हैं, तुरंत वात्सल्य भाव में आ जाए, चुप रहो, ऐसा नहीं करना है। अभी कृष्ण जो है कभी नटखट पंडित भी करते हैं वो बलराम जी के साथ करते, थोड़ा सा हद से पार हो जाता है तो बलराम जी को देख के डर जाते, नहीं अभी अभी यही नहीं करना। तो इनके पास एक विशेष बलराम जी का एक डर भी रहता है कृष्ण, तो ये डर की वजह से वो कृष्ण जो है नटखटपंथी करते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं। और जब भी कृष्ण को तकलीफ होता है तुरंत एक माँ जिस प्रकार देखभाल करती है बच्चों को, उसी प्रकार बलराम जी कृष्ण को हमेशा, खास करके जब यशोदा माई की अनुपस्थिति में कृष्ण को जरा सा भी अनुभव नहीं करा दे रहे थे कि यशोदा माई नहीं, तो यशोदा माई बलराम जी के रूप में वो जंगल में गाय को चराने के लिए जाते, कि कृष्ण को जरा से भी अनुभव ना हो उनकी माँ की अनुपस्थिति, उनकी यशोदा माई की अनुपस्थिति। ये बलराम जी का विशेषता है। खास करके एक बार ऐसा हुआ कि बलराम जी जो है अपने वात्सल्य भाव में आए, जब वात्सल्य भाव में आए तो उनको पता लगा कि जो लीला हुआ आपको मालूम है कि यशोदा माई ने कृष्ण को ओकल के साथ बांध दिया। ओकल के साथ जब बांध दिया कृष्ण को, खबर पहुंच गया सारे व्रज में कृष्ण को किसी ने बांध के रखा, किसी को नहीं मालूम था कौन बांध। बलराम जी को मालूम पड़ा ये दूर कुछ थे, और बलराम जी जोर से भाग के हुए आए, तेजी से भाग के हुए आए, देखे कृष्ण गोकुल के साथ बंधे हुए देखे, बोले कौन है वो, जानते हो मैं कौन हूँ, मैं संकर्षण हूँ, लड़ाई के समय संकर्षण के मुख से आग निकलता है, सारा ब्रह्मांड जल जाता है, मैं सबको जला दूंगा, इतने क्रोधित हो गए, कौन है मेरे कृष्ण को बांध। जैसे किसी ने कहा यशोदा मैंने किया, तुरंत बलराम जी भागे उधर से। तो कभी कभी उनके अंदर वात्सल्य आता है, लेकिन जैसे यशोदा मैं को देखते हैं बलराम जी जो है वो भी घबरा के भाग जाते हैं। तो हमेशा ये जो बलराम जी का ये अनेकों रसों में सेवा करने की भाव है, वात्सल्य रस हुआ, अभी बलराम जी माधुरी रस में कैसे सेवा करेंगे कृष्ण का, हवेली सर्व कृष्ण इन माधुरी रस। तो इसके बारे में आचार्यगण कहते हैं बलराम जी अपने आप को विस्तार करते हैं अनंत मंजरी के रूप में। बलराम जी वैसे उनका पुरुष का शरीर है, तो अगर माधुरी रस में सेवा करना है उनका एक स्त्री का स्वरूप होना चाहिए, तो बलराम जी विस्तार करते अनंग मंजरी के रूप में। और अनंग मंजरी कौन है? अनंग मंजरी श्रीमती राधारानी की बहन है, शी इज सिस्टर ऑफ श्रीमती राधारानी। और अनंग मंजरी का जो स्वरूप है पूर्ण स्वर्ण रंग का है और नीले वस्त्र को धारण करती हैं। और अनंग मंजरी जो है एक मंजरी, भले ही उनका नाम है फिर भी नाम मंजरी, मंजरी का अर्थ है कि जो गोपियों को वो हेल्प करते हैं, उनकी सहायता करते हैं। वैसे अनेक मंजरी एक एक गोपी के अंडर में रहते हैं, फिर भी अनंग मंजरी एक गोपियों का भी लीडर है, एक तरीके से गोपियों की सेवा करती हैं और साथ साथ में गोपियों का भी लीडर के रूप में भी कार्य करती है। और अनंग मंजरी एकदम ऐसी लीलाओं में भाग लेती हैं या ऐसी लीलाओं में सेवा करती हैं फिर राधा कृष्ण की, जहाँ कोई गोपी और कोई भी अन्य मंजरी उपस्थित ना हो। ये बड़ा विशेष और गुप्त स्थान है जहाँ कृष्ण राधा कृष्ण लीला होता है, उसको कुंज कहा जाता है, कुंज भी है और निकुंज भी है। और कुंज या निकुंज में अनेकों अनेकों हैं जहाँ जहाँ अनेकों सखियाँ राधा कृष्ण की सेवाएँ करती हैं। लेकिन सारा जगत में जैसे आप प्रदेश में पढ़े होंगे सबसे सर्वोच्च स्थान है गोवर्धन, उसमें भी कौन सा स्थान है? राधा सर्वोच्च स्थान। और राधा कुंड का भी एकदम गहराई का बीच वाला जो स्थान है उधर निवास करती है कौन? अनंग मंजरी। ये राधा कुंड का बीच वाला जो स्थान है उसका नाम है स्वानंद सुखदा कुंज। आपका ये नाम सुने होंगे, किसी को याद है ये नाम कहाँ है? कहीं सुने होंगे, मायापुर गए होंगे तो जलंगी के उस पार भक्तिनाथ ठाकुर का जो घर है उसका नाम है स्वानंद सुखदा कुंज। ये बड़ा गहराई से जानना चाहिए कि हमारे आचार्य किस प्रकार क्या क्या नाम देखे गए। तो स्वानंद सुखदा कुंज वो है यहाँ से भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने भक्तिनाथ ठाकुर भक्तिनाथ ठाकुर साथ में रहते थे, तो हमारे जो रूपमंजरी है, रूपमंजरी कौन है, सारे मंजरे कौन है, ये सब एकदम कृष्ण के घनिष्ठ सखियाँ हैं और घनिष्ठ सेवा सेवकियाँ हैं, यही आचार्य रूप में प्रकट हुए। तो इतना हमको ये नहीं सोचना चाहिए हाँ ठीक है ये भी आचार्य हमको शिक्षा दिए, नहीं, ये कृष्ण के माधुर रस की लीलाओं में एकदम अंतरंग लीलाओं में भाग लेने वाले हैं ये सब। और ये अनंग मंजरी किधर है, स्वानंद सुखदा कुंज, राधा कुंड के बीच में जो ऐसे कंकड़ कुंड कहा जाता है, पता नहीं आपने पूछा हुआ कि ये जो जो बैंगल कंकण के द्वारा उनको सब खोदा गया था उधर है कहा जाता है, तो वो जो जगह है उधर स्वानंद सुखदा कुंज है। उधर जाने के लिए पहले ब्रिज रहा करता था, अभी भी छोटा सा ब्रिज है, वो कृष्ण राधा कृष्ण लीला गुह्य लीला है, वहाँ केवल एक ही सखी है या मंजरी है, कौन है, आनंद मंजरी। आनंद मंजरी ऐसी व्यवस्थाएं करती हैं जहाँ अन्य कुंजों में नहीं होता, और कृष्ण राधा और कृष्ण हर रोज, भले ही कभी कभी कोई कुंज में जाते हैं कोई कुंज में नहीं जाते हैं, लेकिन ये कुंज में तो रोज उनको जाना ही है, क्योंकि बलराम जी अनंग मंजरे के रूप में उधर सेवा कर रही है। स्वानंद सुखदा कुंज ये कहाँ है, विश्व का सर्वोच्च जगह, सारा जगत का आध्यात्मिक जगत का सर्वोच्च जगह राधा कुंड, और उसमें भी बीच में है। अब देखिए बलराम जी किस प्रकार कृष्ण का ऐसा सेवा करते हैं, जो कृष्ण सोचते हैं उनके बिना तो मेरा कुछ है ही नहीं, क्यों, कृष्ण का खड़े होने का भी आधार बलराम जी है, कहीं भी मौका नहीं छोड़ दे सेवा करने का। इसलिए आज जो बलराम जयंती है उनसे हमको हमको क्या सीखना है, सेवा का भाव सीखना है। एक बार मैंने एक वरिष्ठ भक्त से पूछा कि मुझे कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए क्या करना होगा और माया में माया के प्रभाव से बचने के लिए क्या करना होगा। उन्हें कहा कि आप जितना सेवा कर सकते हो उससे ज्यादा करने के लिए प्रयास करो। मुझे वो स्टेटमेंट इतना अच्छा लगा कि वो उतारने के लिए प्रयास करता हूँ, जिस दिन उतारने के लिए प्रयास करता हूँ वो दिन अच्छा लगता है। मान लो कि आप कितना सेवा कर सकते हो, आप प्रयास करो कितना ज्यादा। तो मान लीजिए आपके पास 24 घंटा है, तो 24 घंटा है तो 24 घंटा का सेवा नहीं होना चाहिए, 26 घंटा या 28 घंटा का सेवा लेना चाहिए, उसके द्वारा क्या होगा, जरा सा भी मौका नहीं मिलेगा। ये बलराम जी का भाव है, ये बलराम जयंती के दिन हमको इसको हमारे जीवन में स्वीकार करना चाहिए। तो बलराम जी का तत्व के बारे में हमें अभी तक चर्चा किया, वी फिनिश्ड अबाउट द वी स्पोक अबाउट द तत्व ऑफ बलराम, बलराम तत्व कौन है, हु इज बलराम, बलराम जी आदि गुरु है और वो संकर्षण है, प्रद्युम्न निरुद्ध और विस्तार करते हैं, और बलराम जी शेष नाग है, अनंत शेष है, और उसके बाद हमने भी चर्चा की किस प्रकार बलराम जी पांचों के पांच रस में भगवान की सेवा करते हैं। तो इस प्रकार बलराम तत्व का हमारा जो चर्चा है वो पूर्ण हुआ। अभी बलराम का लीला है, लीलाओं को चर्चा करने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा, आपके पास समय है तो करेंगे, नहीं तो अभी इधर समाप्त करेंगे। आप आपका क्या विचार है वो बताइए, क्या करना है, व्हाट टू डू, वी फिनिश, ठीक है, ठीक है, संक्षिप्त में कह देता हूँ और 20 मिनट थोड़ा 10 बजे तक कर, ठीक है, ओके। तो बलराम जी का लीला है, सबसे पहला प्राकट लीला, बहुत सारे लोगों को प्राकट लीला के बारे में कन्फ्यूजन है, इतना है कि भगवान बलराम जी का प्राकट इतना अद्भुत है, ये अद्भुतता को सहन नहीं कर पाते हुए ही इस अद्भुतता अच्छी कोई अद्भुत तुरंत आता है, कैसे प्रश्न आता है कि नहीं, सबसे पहला ये प्रश्न आता है, भले आपको कितना भी कुछ भी अनेकों प्रश्न है लेकिन जो हो सबसे अद्भुत चीज है उसके बारे में प्रश्न निकलता है। आपको मालूम है श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के पहले अध्याय में कि नैमिषारण्य के ऋषियों ने 6 प्रश्न पूछा था, वैसे ही 10वें स्कंद के पहले अध्याय में भी परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से 6 प्रश्न पूछे कृष्ण के संबंध में। वैसे कृष्ण के संबंध में प्रश्न था लेकिन पहला प्रश्न था बलराम जी के संबंध में, क्या प्रश्न था उनका, रोहिणी तने प्रोक्त राम संकृष्णस्त्वया देवक्या गर्भ संबंध कुतो देहांतरम विना, ये बड़ा प्रसिद्ध प्रश्न है या पहला प्रश्न है, और किसने पूछा, परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछे। बाद में पहले उन्होंने चार कारण बताया था, मैं कृष्ण के बारे में क्यों सुनना चाहता हूँ। चार कारण बताने के बाद तुरंत उनका प्रश्न था बलराम जी के बारे में, प्रश्न उनको विचार था, उनको उनको इच्छा थी मैं कृष्ण के बारे में सुनूं, लेकिन प्रश्न किया बलराम जी के बारे में क्यों, क्योंकि बलराम जी का प्राकट्य कृष्ण के प्राकट्य से और अद्भुत है। तो अद्भुत अगर कुछ है तो स्वाभाविक तरीके से पहला वही प्रश्न निकलता है। तो बलराम जी के बारे में प्रश्न था कि रोहिणी तरह प्रोक्त, बलराम जी को क्या कहा जाता है, रोहिणी तरह, रोहिणी के पुत्र है, प्रोक्त सब लोग बोलते हैं रोहिणी के पुत्र है, लेकिन भले ही बोला जाता है रोहिणी के पुत्र है, लेकिन बलराम जी कौन है, रोहिणी तने प्रोक्त राम संकर्षण स्वया, वो राम है। तत्व के विचार में मैंने बल के बारे में चर्चा किया था, राम के बारे में चर्चा नहीं किया था। राम का अर्थ क्या है, जो आनंद प्रदान करते हैं, वो बलराम जी का एक ही स्वभाव है, कृष्ण को आनंद प्रदान करते हैं और कृष्ण भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं, क्योंकि वो नित्यानंद है, वो सारे आनंद से भरे हुए है, इसलिए हर जगह केवल भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। एक जगह एक आचार्य ने कहा, जब बलराम जी स्वयं प्रकट हुए थे लक्ष्मण के रूप में, लक्ष्मण कौन है, छोटे भाई रामचंद्र के, तो रामचंद्र को आनंद प्रदान करने के लक्ष्मण ने बहुत प्रयास किया, लेकिन क्या हुआ, जब सीता जी का अग्नि परीक्षा के लिए लक्ष्मण को स्वयं वो आग जलाना पड़ा, और सीता जी को छोड़ने के लिए जब भगवान आदेश दिया, लक्ष्मण जी विवश हो गए, क्योंकि छोटे भाई आज्ञा तो स्वीकार करना होगा। आचार्य ने कहा कि इसने बलराम जी ने क्या कहा, क्या सोचा कि ये जो जो लीला है भगवान रामचंद्र को जरूर पसंद कर सकता है, लेकिन भक्तों का आनंद नहीं दे रहा है, तो मैं क्या करूंगा, अगली बार जब प्रकट होऊंगा तो मैं बड़े भाई के रूप में प्रकट होऊंगा, क्योंकि बड़े भाई के रूप में प्रकट हो गए मैं केवल कृष्ण को ही नहीं, भगवान को ही नहीं, सारे भक्तों को भी आनंद होने वाला लीलाओं का करूंगा। इसलिए लक्ष्मण के रूप में छोड़े भाई, उसके बाद उसके बाद क्या हुआ, वही प्रकट हुए बलराम जी के रूप में, और एकदम बिल्कुल ऐसा लीलाओं को संपन्न कराए जिसके द्वारा केवल भगवान को भी आनंद प्राप्त होता रहे और केवल भक्तों को भी आनंद प्राप्त होता रहे। और वही बलराम जी प्रकट हुए नित्यानंद के रूप में, नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, जैसे अनेकों लीला संपन्न हो रहा था कहाँ नवदीप में, सब भक्तों को आनंद हो रहा था और सब चैतन्य महाप्रभु सब भक्त आनंद में कीर्तन कर रहे थे, जैसे चैतन्य महाप्रभु संन्यास दिए, ऐसा हो सकता है कि चैतन्य महाप्रभु आनंद हो लेकिन भक्तों को आनंद नहीं हो रहा था, भक्त महादुखी थे, और चैतन्य महाप्रभु को और बाल के बिना देखना बिल्कुल कोई पसंद नहीं कर रहे थे, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे प्रभु संन्यास थे, संन्यास मतलब कष्ट है। तो नित्यानंद प्रभु को बहुत गुस्सा आया, नित्यानंद प्रभु ऐसे जब संन्यास देने के बाद जगन्नाथ पुरी पहुँचने वाले थे, तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अभी मुझे थोड़ा सा अपने जो क्रियाओं को करना जाना है, आप ये थोड़ी डंडा पकड़ के रखो। जैसे नित्यानंद प्रभु के हाथ में डंडा है संन्यास डंडा, तुरंत उसको तोड़ दिए, तीन हाथ करके उसको फेंक दिए। तो नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, ये संन्यास दंड भंगा, अभी वो नदी है उधर दंड भंगा नदी है, उसके द्वारा सारा जगत को बताया भी आप दुखी मत हो, मैं हूं ना, भले ही चैतन्य महाप्रभु संन्यास दिए, मैं संन्यास को भी मैं देखभाल करता हूँ कि वो संन्यास के द्वारा उत्पन्न हुआ जो कष्ट है वो नहीं होगा, उसके द्वारा सारे भक्तों को थोड़ा सा सांत्वना प्राप्त होता है, उनको सुख प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है। और जहाँ जहाँ भक्तों के मन में थोड़ा सा भी दुख का अनुभव होता है, बलराम जी उपस्थित हो जाते हैं। और एक लीलागत तत्व है बलराम जयंती आज ही क्यों मनाते हैं, आज ही क्यों हुआ बलराम जी का प्राकट्य, क्योंकि आपको मालूम है अभी श्रावण का आखिरी दिन है, तो श्रावण का आखिरी दिन क्या होता है, पूरा श्रावण जो है वो वृंदावन में अनेकों अनेकों लीलाओं होते हैं, खास करके झूला का लीला होता है और अनेकों राधा कृष्ण लीलाओं को श्रवण करने को मिलता है, खास करके राधारानी बहुत आनंदित आनंद महसूस करती है, क्यों, ये तो आपको मालूम है कि झूलन यात्रा के समय में क्या होता है, ये श्रावण मास में जो होता है झूलन यात्रा, राधा गोविंद जी का झूलन यात्रा होता है। तो ये श्रावण मास ऐसा मास है पारंपरिक तरीके से वैदिक सभ्यता के अनुसार कल्चर के अनुसार जो नवविवाहित जो स्त्रियां होती हैं उनके लिए आनंद का समय होता है, क्यों, क्योंकि उनको अपनी जो माँ का घर में जाने को प्राप्त होता है, क्या बोलते हैं मायके जाने को अवसर मिलता है, उनकी जो स्त्रियां हैं उनके भाई आके उनको घर में लेके जाते हैं और सास ससुर का डांट सुनने से उनको राह मिलता है, और खाना पकाने का नहीं होता, जरूरत नहीं पड़ता है, तो इसलिए वो इंतजार करती हैं। तो ऐसा हुआ सिंधु राजरानी जब यावत में गिटिला गुटिला का रोज तनाव को महसूस कर रही थी, ये श्रावण आया तो आशा कर रही थी कब आएगा सुदामा, कब आएगा आके मुझे लेके जाएगा। लेकिन एक हफ्ता हुआ, दो हफ्ता हुआ, आए नहीं, बहुत लेट आए। तो कैसे भी कर कुछ समय के बाद श्रीराम जो है वो राधा रानी को लेके गए, तो लेके गए पर वापस बरसाना। तो बरसाना में राधा रानी बहुत आनंदित हो रही क्योंकि अभी कृष्ण को मौका मिलने के लिए कोई रुकावट, कोई उनका कोई रुकावट नहीं है। तो श्रीमती राधा रानी जैसे आए, सारे सखियों सारे मित्रों सब उनको राधा रानी को झूले कर बिठाए और झूला झूलने लगे। और बड़ा सुंदर लीला का वर्णन आचार्य ग्रंथों में। तो अभी श्रावण समाप्त हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, श्रीमती राधा रानी वापस उनको यावत जा रहा है, एक दुख है। और दूसरा है उत्सवों का समाप्ति का दुख है, पूरा श्रावण का उत्सवों का समाप्ति का दुख है। तो ये दुख को मिटाने के लिए बलराम जी आज प्रकट होते हैं। श्रावण की जो समाप्ति है, वो जो दुख है उसको दूर करने के लिए बलराम जी प्रकट होते हैं। एक विचार है आचार्यों का। तो खैर बलराम जी का प्राकट्य बड़ा अद्भुत है कि राम संकर्षत्वया आप संकर्षण हो। तो संकर्षण क्यों है, बलराम जी का नाम संकर्षण क्यों कहा गया है, क्योंकि बलराम जी आकर्षित किए, ही अट्रैक्टेड, कर्षयति मतलब आकर्षण। तो ये आकर्षण क्यों है, ये कहाँ से, ये नाम क्यों पड़ा। गर्गाचार्य ने उनको कहा कि ये संकर्षण है, क्यों है, इसके पीछे थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं जन्म तत्व के बारे में। सबसे पहला बलराम जी प्रकट हुए देवकी के गर्भ में। देवक्या गर्भ संबंध कुतो देहांतर बिना, रोहिणी के गर्भ से प्रकट हुए बाहर। लेकिन ओरिजिनली अस्तित्व में बलराम जी प्रकट हुए देवी गर्भ में, इसलिए देवक्या गर्भ संबंध या कुतो देहांतर होना, देहांतर में। अगर माँ, मान लीजिए माँ का गर्भ का परिवर्तन एक बच्चे का तभी होता है जब देव त्याग करता है। देह त्याग किए बिना माँ का गर्भ का परिवर्तन होता नहीं है। जैसे एक माँ के घर में बैठा हुआ बच्चा, वो बाहर आएगा और बड़ा होने के बाद कभी भी उनका मृत्यु किया दूसरे माँ के घर में जाए, पुनर्विचरणम पुनर्विचरणी। ये पुनर्विचरणी तभी होगा जब शरीर त्याग किया हुआ हो। लेकिन देहांतरम बिना, यानी बलराम जी अपना शरीर त्याग के बिना या देहांतर के बिना गर्भांतर कैसे हुआ, ये प्रश्न था। गर्भांतर हुआ कि देहांतर के बिना, ये साधारणता नहीं होता है। तो ये बलराम जी का जो दिव्यता है इसी में है। क्या दिव्यता है, देहांतर के बिना गर्भांतर हुआ। देवी के घर में जैसे प्रकट हुए तो भगवान ने योग माया को आदेश दिए। क्या आदेश दिए, आप जाओ बलराम जी को देवकी के गर्भ से आप रोहिणी माता के गर्भ में आप चले। तो बलराम जी देवकी के गर्भ में 6 महीने थे और रोहिणी के गर्भ में 8 महीने थे। तो जैसे छठा महीना हुआ तो सबको ऐसा लगा देवकी का जो है वो उनका गर्भपात हो गया। उसके बाद बलराम जी कहाँ गए, रोहिणी के गर्भ में प्रवेश किए। तो रोहिणी के गर्भ में 8 महीने में थे, 8 महीना रोहिणी के गर्भ में थे। और ठीक भगवान कृष्ण का जो प्राकट्य होने वाला है जन्माष्टमी, उसके पहले जो पूर्णिमा है उसको, जिसको राखी पूर्णिमा कहा जाता है। आज सब लोग जो राखी बांधने के लिए जाते हैं, आज मेरे कुछ भक्तों का बोल दिया भाई बलराम जयंती, मुझे हमको तो हमारे भाई से मिलना है, बहन से मिलना है, राखी बांधना है, बंधवाना है, मिठाई देना है, परिवार वाले आ रहे हैं, सब नाना प्रकार के बहुत सारे लोगों ने बहाना बना लिया। लेकिन ये अस्तित्व में कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये सही शब्द है। वास्तविकता में हमको रक्षा प्रदान करने वाले कौन है, हमारे गुरु है। हमारे गुरु, मूल गुरु कौन है, बलराम जी हैं। राखी जो है रक्षा का प्राकृत शब्द है। प्राकृत शब्द का अर्थ है कि प्राकृत मतलब चालू भाषा में, चालू भाषा में रक्षा को राखी कहा जाता है। तो ये जो जो रंग बिरंगी जो चीज़ें जो मिलता है वो क्या रक्षा करेगा आपको, रक्षा जो है भगवान प्रदान करते हैं। अवश्य रक्षवे कृष्ण वास्तविक योगक्षेम वहां में आए, भगवान ने वादा किया है मैं रक्षा प्रदान करता हूँ। तो रक्षा कैसे प्रदान करते हैं भगवान, गुरु के द्वारा प्रदान करते हैं। और बांधना है तो आपके प्रभुपाद जी को बांधना है, बांधना है तो आपके बलराम जी को बांधना है। तो हमारा जो भाई कल मरने वाला है किसका, जिसका भरोसा नहीं है, उसको बांधने का क्या फायदा है, देयर इज नथिंग, नो यूज ऑफ इट। एक दीक्षित बच्चे इस बात को कहा, मुझे बहुत गुस्सा है, मैंने इस बात को कहा कि मेरी बहन आ रही है मुझे राखी बांधने के लिए। मैंने कहा कि आपका खुद का ठिकाना नहीं है कि किसको रक्षा कर पाओगे आप। अगर ये बात लोगों को गलत लग सकता है, लेकिन ये सही बात है, इट इज ट्रूथ, ये सत्य है। सत्य ये है कि रक्षा, राखी का अर्थ है रक्षा। रक्षा हम कौन कौन करते हैं, वह रक्षा भगवान भी वो करते हैं, मैं भी रक्षा नहीं करूँगा, रक्षा मेरे आपके गुरु करेंगे, हम और गुरु डज और रक्षा। क्योंकि रक्षा का अर्थ क्या है, हम पतन होने वाले हैं बौद्धिक जगत में, हमको उठा के अच्छा करे भक्ति करो, जो हमको भक्ति मार्ग में स्थित कर सकता है वो रक्षा है। वास्तविकता में बौद्धिक जगत में कोई रक्षा ही नहीं है, जैसे कुएं पड़ा हुआ है, जो रक्षा का अर्थ क्या है, कुएं से बाहर निकालना। ऐसा नहीं कि कुएं पड़ा हुआ है उधर कुछ मिठाई खिलाए, कुएं में व्यक्ति को मिठाई खिलाओ तो उसको रक्षा तो नहीं कहा जाता है, कुएं से बाहर निकालो उसको रक्षा कहा जाता है। तो मैं इस बात को कहा कि मैंने कहा कि मिठाई खाने के लिए बैठे हो, आते बौद्धिक जगत के अंध कुंड में पड़े हुए हो, तो इससे निकालने वाले बलराम जी हैं। तो ये अस्तित्व में ओरिजिनल परंपरा था, हमारी वास्तविक परंपरा ये था कि बलराम जयंती के दिन आके जितने भी लोग हैं, केवल स्त्रियाँ ने, केवल बहन, सब लोग, जितने भी लोग, सब लोग भगवान के लिए भोग बनाते थे, बलराम जी को भोग बनाकर उनको प्रसन्न करते थे। खास करके बलराम जी को प्रसन्न करने के लिए वो वरुणी एक एक ड्रिंक है उसको बनाते थे बलराम जी को। ये ऐसे बहुत ही जगह नशा टाइप नहीं है, उसको बनाने का भी एक रेसिपी है, वो रेसिपी भी दूध से बनता है और शक्कर बनता है, उसके अंदर शहद डाला जाता है, बहुत सुंदर रेसिपी है, उसको बलराम जी को खिलाते थे और उससे अनेकों मिठाई बनता है, वो मिठाई को बना के बलराम जी को खिलाते थे। ये ऐसे भी एक ट्रेडिशन था, तो 2000-3000 साल चले वृंदावन में इस प्रकार का ट्रेडिशन था। हाँ, लेकिन क्या हुआ, बाद में कुछ समय के बाद कोई एक मुसलमानों का अत्याचार बहुत होने लगा सारे स्त्रियों के ऊपर। तो एक राजा ने सोचा ठीक है, अभी मैं इन स्त्रियों को लेके ये जो राजा है उसको राखी बंधवा देंगे और कहेंगे वो राजा मुसलमान राजा ने बताया क्या हो रहा है। तो इसने कहा कि अभी ये सारे स्त्रियाँ जो आपकी बहन होंगी, तो कैसा है क्या ठीक, हम उनके ऊपर अभी अत्याचार नहीं करेंगे। तो कुछ एक सामाजिक एक व्यवस्था को ठीक करने के लिए एक तात्कालिक योजना बनाया गया था, लेकिन उसको अभी एक परंपरा बना दी और कुछ ब्राह्मण लोग आते पूजा करते हैं, क्या क्या हंगामा करते हैं। नहीं, ये कोई वैदिक फेस्टिवल नहीं है। कुछ लोग ऐसे तो दक्षिण भारत में इसका इतना ये नहीं, अभी उधर भी बहुत प्रचलित हो गए, पहले बचपन में ऐसा कोई राखी करके जानते नहीं थे। तो पहली बार जब कहीं उत्तर भारत में कहीं गए तो उस दिन कोई या बहुत सारे लोग राखी राखी बांधे, क्या हो रहा है राखी क्या है क्या। उस समय मैंने रिसर्च किया तो उसको पता लगा कि ये सिस्टम पहले था ही नहीं। तो अस्तित्व को रक्षा करने वाले गुरु है, लेकिन जो रक्षा करने वाले हैं गुरु, जिनका जन्मदिन मनाने के बिना हम कहीं किसी के घर में जा रहे हैं, कोई लड्डू खा रहे हैं, कोई कर रहा है कर रहा है, इट्स एक्चुअली टोटल नॉनसेंस। खास करके हमारे जो भक्तों को इस बात को ये संदेश देना चाहिए। तो संकर्षण, संकर्षण क्यों, बलराम जी का नाम संकर्षण क्यों है, जैसे आपको मालूम है कि बलराम जी प्रकट हुए कहाँ, देवकी के देवी घर में 6 महीने निवास करने के बाद वो रोहिणी माता घर में प्रकट हुए। ये बात बहुत सारे लोगों ने एक प्रश्न पूछते हैं, तो रोहिणी माता अगर वो व्रज में है तो बलराम जी रोहिणी माता को प्रकट हुए बलराम को, तो वसुदेव तो कहीं और है, वो तो इसमें है। तो इसका जवाब ये है, रोहिणी माता वो 3 महीना जब गर्भवती थी उस समय उनको उधर भेजा गया, तो किसी को मालूम नहीं पड़ रहा था कि रोहिणी माता के गर्भ में बलराम जी है। तो रोहिणी माता इधर वृंदावन में आए, ब्रज में आए नंद महाराज के संरक्षण में, क्योंकि वसुदेव को उनको डर था कि कंस जो है वो रोहिणी के ऊपर भी अत्याचार कर सकता है, क्योंकि देवकी के पुत्र के द्वारा ही खतरा था, रोहिणी के पुत्र के द्वारा खतरा नहीं था, लेकिन फिर भी ये कंस के ऊपर भरोसा नहीं था। तो इसलिए वसुदेव ने क्या कर अपने नंद महाराज मित्र को कहा कि आप मैं रोहिणी माता का देखभाल करूँ। तो रोहिणी माता घर में बलराम जी प्रकट हुए और ठीक 8 महीने गर्भ होने के बाद वो प्रकट हुए, बलराम जी प्रकट हुए, जातक कर्म क्रिया किया गया था और साथ साथ में कृष्ण जो है उनका भी जातक कर्म किया गया था। ठीक 8 दिन का अंतर है जन्माष्टमी में और बलराम जयंती, और बलराम जी प्रकट होने के ठीक 8 दिन के बाद कृष्ण प्रकट हुए, तब तक बलराम जी आंख बंद किए। विशेषता यह है जैसे बच्चे प्रकट होते पैदा होते हैं सबका आंख बंद रहता है, और कुछ लोग कभी कभी कुछ बच्चे 1 महीने के बाद आंख खोलते तब तक आंख बंद ही रहते हैं, और गर्भ के अंदर भी बच्चे आंख बंद करके रहते हैं, ऐसा आंख खोल के नहीं रहते। लेकिन कृष्ण का ऐसा बात है जैसे वो प्रकट हुए आंख खोले थे, और जैसे कृष्ण प्रकट हुए रोहिणी ने बलराम जी और कृष्ण दोनों को एक ही झूला, झूला ही बोलते उसको झूला, वो अलग प्रकार का झूला है, वैसा झूला नहीं है अभी रस्सी वाला झूला है, लकड़ा वाला झूला रहता है ना जो बच्चों को झूलाते हैं, वैसे झूला में दोनों को बिठाए, और बलराम जी जैसे क्या बोलते हैं पलना, हाँ पलना, पलना बोलते हैं, क्रैडल एंड स्विंग, क्रैडल को पलना बोलते हैं, ठीक है मेरी हिंदी इतना अच्छा नहीं है। तो उनको जैसे बताया बलराम जी ने आंख खोली, पहला जो दर्शन है बलराम जी ने कृष्ण का किया, फर्स्ट दर्शन डब कृष्ण। तो इन आचार्यों को कहना है कि ये संकर्षण हुए कैसे, आचार्य का कहना ये है बलराम जी और कृष्ण, कृष्ण बलराम, जो व्रज के कृष्ण बलराम हैं वो मूल है, और जो मथुरा और द्वारका के कृष्ण और बलराम हैं वो विष्णु तत्व है, या वसुदेव कृष्ण हैं और वसुदेव कृष्ण की एक्सपेंशन है बलराम जी, जो आदि संकर्षण है, जो व्रज के बलराम आदि संकर्षण नहीं है, जो मथुरा और द्वारका के बलराम है आदि संकर्षण है। तो आचार्य कहना है जैसे देवकी के गर्भ में कृष्ण प्रकट हुए उसी समय साथ साथ में यशोदा के गर्भ से भी कृष्ण प्रकट, यशोदा के गर्भ में भी कृष्ण प्रकट हुए। तो भागवत में वर्णन है कि कृष्ण का जातक कर्म संस्कार किया जाता है, जैसे बच्चा पैदा होता है एम्बिलिकल कॉर्ड, जैसे बच्चे और माँ के बीच में जो संबंध होता है वो एक नाल होता है, उसको काटा जाता है और उसे एक संस्कार किया जाता है, और जैसे यशोदा माई ने कृष्ण सुबह उठ के देखे कि वह बच्चा रो रहा है तो सारे ब्राह्मणों को बुलाए, जातक कर्म संस्कार किया गया था। ये जातक कर्म संस्कार का अर्थ है कि एम्बिलिकल कॉर्ड को काटना होता है। तो यशोदा माई के शरीर और कृष्ण के शरीर के बीच में जो नाल था वो उसका जुड़ा हुआ था। अगर वसुदेव कृष्ण को मथुरा से गोकुल लेके आए तो ऐसा कैसे जुड़ा रहेगा? तो आचार्य कहना है कि जैसे देवकी ने कृष्ण को जन्म दिया वो वसुदेव कृष्ण का जन्म दिया, और इधर नंद महाराज के आंगन में गोकुल में यशोदा माई भी कृष्ण को जन्म दिया श्याम सुंदर कृष्ण का, और जैसे वसुदेव लेके आए तो कौन, ये जो कृष्ण वसुदेव कृष्ण है, ये जो वृंदावन कृष्ण है श्याम सुंदर कृष्ण है, ये कृष्ण के अंदर समाहित हो गए। उसी प्रकार बलराम जी का भी है, जो मूल संकर्षण बलराम जो देवकी के घर में प्रकट हुए, उन्होंने साथ साथ में बलराम जी रोहिणी के घर में प्रकट हुए थे, और ट्रांसफर का अर्थ क्या था, ये जो व्रज के बलराम है उन्होंने आकर्षित किया, किनको आकर्षित किया, ये जो मूल संकर्षण बलराम है जो देवकी के घर में प्रकट हुए उनको आकर्षित किए, और दोनों एक होकर समाहित हो गए। इस प्रकार बलराम जी का जो जन्म है इतना दिव्य है, इतना भव्य है, और जन्म होने के साथ साथ आंख बंद के मैं देखूंगा तो सबसे पहला कृष्ण को देखूंगा, ये श्रीमती राधा रानी के साथ भी ऐसे ये बलराम। तो ये बलराम का ये जो जन्म लीला है, वैसे उन्होंने अनेकों अनेकों ऐसा अद्भुत अद्भुत लीलाएं किए, बलराम जी का लीलाएं असुरों को वध करने की लीलाएं, और कुरुक्षेत्र में उन्होंने भाग ले लिया, और एक महत्वपूर्ण एक ऐसा एक विशेष भाव है एक चीज को बताते हुए इस प्रॉब्लम को समाप्त करते हैं। ये दो भी तत्व विचार है लेकिन फिर भी लीला के अनुसार है कि बलराम जी कुरुक्षेत्र में भाग नहीं लिए, क्यों भाग नहीं लिए, तो लोगों का बहिर्गत कारण यह है कि उनके दो भाई है, दो किसका पक्ष लें, उनको समझ नहीं आता किसका पक्ष लूं, कैसे करूं, मैं कुरुक्षेत्र में भाग नहीं लूंगा, निकल गया। तो इसके द्वारा एक विशेष संदेश ये है बलराम जी दे रहे हैं, मेरे शिष्य है दुर्योधन। सब लोगों को यह आश्चर्य लगता है कि बलराम जी का एक शिष्य था दुर्योधन, उनको अच्छी तरह से ट्रेनिंग दी, इतना हद तक कि गदा युद्ध में इतना एक्सपर्ट बनाया दुर्योधन को, भीम जो है उनके पास दुर्योधन से ज्यादा बल था, लेकिन दुर्योधन के पास भीम से अच्छा टेक्निक था, बलराम ने सिखाया था। तो बलराम जी अपने शिष्य से बहुत प्रेम करते थे, दुर्योधन को हमेशा माफ किए, बहुत सारे गलतियां के लिए भी माफ किए। लेकिन जब दुर्योधन ने ये सोचा कि मैं पांडवों को मारूंगा, जब वो वैष्णव अपराध किए, स्वयं मूल गुरु तत्व क्या किए, अपने शिष्य के साथ हाथ साफ कर लिया, जो करना करो, मुझे कुछ लेना देना तुमसे, तुम मर जाओ, तुम्हारा मृत्यु निश्चित है। तो इधर अनेकों प्रकार के अपराध है, नाम अपराध है, जीव अपराध है, सेवा अपराध है, और चौथा प्रकार का अपराध है वैष्णव अपराध। ये जो चार प्रकार के अपराध भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं, उनमें से भले ही कोई व्यक्ति नाम अपराध करता है, सेवा अपराध करता है या जीव अपराध करता है, गुरु जो है उसको हजम कर लेते, गुरु जो है उसे शिष्य की इन अपराधों को लेके हजम कर लेते और माफ करते, फिर अच्छी तरह नाम जप करो, ठीक करो। लेकिन जैसे वैष्णव अपराध करता है, गुरु भी कुछ नहीं करते, वो भी हाथ साफ करते, तुम अपना भोगो, मैं इसमें भागीदार नहीं हूँ। गुरु जो है वैष्णव अपराध, शिष्य के वैष्णव अपराध के भागीदारी नहीं बनते। जैसे बलराम जी ने दुर्योधन के सारे दुष्ट कर्मों को सहार किया और उनको हजम भी कर लिया, लेकिन वैष्णव अपराध का जब बात आया, उन्होंने कहा कि इट्स ऑन योर ओन, तुमको ही भोगना पड़ेगा, यू हैड टू सफर फॉर इट। और यही बलराम जी तब गए रोमहर्षण सुतर, रोमहर्षण सुत बड़ा प्रवक्ता, व्यासदेव के शिष्य, उनके अंदर एक अहंकार था, मैं वक्ता हूं, बाकी सब श्रोता उनको कुछ नहीं मालूम। और बलराम जी को एक बात मालूम पड़ा कि ये गुरु बनने का नाजायज फायदा उठा रहा है, कौन, रोमहर्षण सुतर, और मैं आदि गुरु हूं, तो मैं जाके देखूंगा बराबर गुरुत्व को बराबर पालन कर रहा है कि नहीं। तो जैसे बलराम जी पहुंचे, रोमहर्षण बलराम जी के स्वागत में सब इतने भी नैमिषारण्य के ऋषि सब खड़े हो गए, रोमहर्षण सुत ऐसे बैठे थे। केवल बलराम जी का ही अपना नहीं करा था, सारे जितने बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, अभी तो ऋषि मुनि ऐसे होते हैं उनको इतना ज्ञान रहता है, वो भी प्रवचन में बैठे रहते हैं, लेकिन जो वक्ता से ज्यादा मालूम रहता है, वक्ता से ज्यादा भक्ति में प्रगति किए रहते हैं, लेकिन वो शांत बैठे रहते हैं, उनको अगर आदर नहीं किया जाए तो अपराध माना जाता है। और जैसे बलराम जी ने देखा ये व्यक्ति जो है सच में ये शिष्यों के प्रति अपराध कर रहा है, तो वैसे गुरु जो शिष्यों के प्रति अपराध करता है, वैसे गुरु को मैं निकाल दूंगा अपने गुरु की पदवी से। बलराम ने घास का तिनका लिया और उसा घास से उन्होंने रोमहर्षण सुत को वध कर दिया। अब देखिए बलराम जी आदि गुरु है, लेकिन उनके जो प्रतिनिधि गुरु पदवी में होने के बाद अपना जो श्रोताओं को आदर नहीं करते, जैसे बत्सदास ठाकुर अपने शिष्यों जब आते थे प्रणाम करते थे, बत्सदास ठाकुर वापस प्रणाम करके क्या कहते, दासोस्मि, क्या कहते थे अपने शिष्यों को, कहते थे दासोस्मि। तो ये जो भाव है, ये गुरु का भी एक शिक्षा है, जो भी वक्ता उनका भी शिक्षा है, प्रवक्ता को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि आपके बिना तो मैं तमोगुण में रह जाता, मैं कप्तानी कहाँ से हो जाता, मैं कृष्ण के बारे में कहने को मौका प्राप्त हो रहा है। ये भाव जो है बलराम जी उधर नैमिषारण्य सिखाए, और बाद में उनको जाना पड़ा, उनकी ब्राह्मणों के आदेश के एक साल तक पिलग्रिमेज में जाना पड़ा। तो बलराम जी अलग अलग जगह गए, तो अनेकों जगह गए, लेकिन जगन्नाथपुरी नहीं गए, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था जगन्नाथपुरी में कृष्ण और मेरा साथ साथ में पूजा होता है, साथ एक ही प्लेटफॉर्म में बैठे हैं, और मैं उधर कैसे जाऊं और ये कैसे देखूं, मैं भी बैठा हूं और कृष्ण भी साथ में बैठे हैं, दोनों को साथ साथ में भोग लगा है, दोनों साथ साथ में पूजा स्वीकार कर रहे हैं, ये मैं देख नहीं सकता हूं। बलराम जी इधर नहीं गए। वैसे बलदेव तत्व अनेकों अनेकों लीलाएं, उन्होंने अनेकों रूप में कुवत किया, और वृंदावन में प्रलंबासुर, धेनुकासुर, ये अनेकों अनेक लीलाएं, मधुर मधुर सुंदर सुंदर लीलाएं हैं, जो बचे हुए जो लीलाएं भागवत में हैं, आज आप और पढ़ सकते हैं, और आज का जो जीवन दिन है और दिव्य में बना सकते हैं। ये मेरी प्रार्थना है आप लोगों से। हरे कृष्णा। कोई कुछ प्रश्न यहाँ की जिज्ञासा कुछ है, समय हो गया है और नहीं लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कहा कि बलराम जी का संबंध राधा मदन मोहन जी से है, तो मैं जैसे राधा मंदिर मंदिर में आया तुरंत उस संबंध को स्मरण किया। मैं आप बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे आपने इधर बलराम जी के बारे में कहने के लिए मौका प्रदान किया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे।
Thank you.